हरे कृष्ण श्रीधाम कौंडिन्यपुर कुंड ऋषि का तपोस्थली भगवती साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी का प्रकट्य स्थल बाल लीला का स्थल भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से सुशोभित इस सुंदर रमणीक विठल रुक्मणी के छत्र छाया में गिरिराज भगवान गिरिराज धरण श्री कृष्ण के कृपा से जगदम्बा अंबिका के क्षेत्र में दूसरे दिन के आज श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उषा देवी और गुप्ता परिवार 7 दिवस के लिए पवित्र पावन मनोहर स्थान पे अपने अंतःकरण के शुद्धि कृष्ण भक्ति की उत्पत्ति प्रकट्य और सामान्य परिवार तथा समाज के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा की कृपा से यहाँ स्कान केंद्र में अक्रूरदास और उनके सब भक्त संग उनके संगी भक्तों के सहयोग से आप और हम सब हरि कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए सुखदेव महाराज परीक्षित के पास जा रहे थे तो इंद्र स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, महाराज भागवत हमको सुना दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए तो तक्षक नाग के सांप के काटने का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सुखदेव महाराज ने इंद्र की ओर देखा और कहा, तेरा ये अमृत के स्वर्ग के अमृत के कलश को उठाओ, यहां से भागवत के अमृत की तुलना स्वर्ग के कलश से करते हो, स्वर्ग के अमृत से करते हो। तुम समझते हो कि कुछ दाम देने से मूल देने से भागवत का अमृत प्राप्त होगा? तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो, ले जाओ अपना कलश। ये भागवत के महात्म की कथा है। कल हमने श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराण और पद्म पुराण के 2 महात्मों का 10 अध्यायों का श्रवण किया था। इस प्रसंग से ये बात स्पष्ट होती है कि भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत गीयते भागवत स्थाने, भागवत पुरुषों के संग में भागवत को श्रद्धा पूर्वक सुनने से भागवत का रस आस्वादन करके हृदय शुद्ध हो जाता है और जो हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में पहले से ही विराजमान है उसका अनुभव होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, लेकिन भगवत साक्षात्कार के बगैर आत्म साक्षात्कार अधूरा है। जैसे देखो आप लोग देखते कैसे हो अपने आप को या चारों ओर सब चीजों को देखते कैसे हो? जब सूरज उगता है तब ना रोशनी होती है, तब सूरज को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और संसार को भी देखते हैं। तो ऐसे भगवान है सूर्य के समान, उसका अनुभव हो गया तो अपने आप को देखेंगे, भगवान को देखेंगे और जगत को भी देखेंगे। जीव जगत और जगदीश, इसको कहते हैं तीन चीजें हैं, जीव जगत और जगदीश, इन तीनों का अनुभव भगवान के अनुभव से होता है। तो भागवत से भगवान श्री कृष्ण का अनुभव करने के लिए कोई भौतिक चीज देकर वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए भागवत में रति कैसे हो, वासुदेव कथा में आनंद कैसे आए, उसमें हमको मिठास कैसे आने लगे, तो कहते शुश्रूषर्धानस्य, शुश्रूषर्धानस्य, श्रद्धा से भक्तों का संग करो, भक्तों की सेवा करो। तो भक्तों की सेवा क्या है? भक्तों की सेवा है हरि कथा सुनना और भगवान का नाम जपना। भक्त किसमें प्रसन्न होते हैं, भक्त खुश किस बात में होते हैं? जब कोई भगवान की कथा श्रद्धा से सुनता है, भगवान का नाम जपता है, भक्त बड़े आनंदित हो जाते हैं। क्योंकि भक्तों का एक ही काम है कि लोग बेचारे दुखी हैं, उनको सुखी कैसे किया जाए, और सुखी करने का साधन भगवान को किसी को मिल जाए तो सुखी हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा तो सुखी हो जाएगा, भगवान से बेमुख हो जाएंगे तो संसार सारा दुखी है। ये प्रश्न पूछा था सनातन गोस्वामी पाद ने, जो मुख्यमंत्री थे बंगाल के, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि हम सब सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सब दुखी क्यों होते हैं? और महाप्रभु जी का उत्तर था, कृष्ण बाहर मुख जीव अतेव माया देता संसार दुख। कृष्ण से बेमुख है जीव, संसार की ओर मुख करके भोग के वांछा कर रहा है, कृष्ण की ओर मुख करके सेवा का इच्छुक नहीं है, इसलिए दुख भोग रहा है। तो सुख कहां है? भगवान के सन्मुख हो जाओ तो सुख हो जाएगा, तो भगवान के सन्मुख कौन करेगा? देखो भगवान की कृपा सदा बरसती है, और भगवान की कृपा बरसती है राधा रानी के माध्यम से। राधा रानी के गांव का नाम ही है बरसाना, इसका मतलब उसकी तो वर्षा सदा होती रहती है, वर्षा तो सदा होती रहती है, लेकिन आपका कटोरा, आपकी बाल्टी, आपका बर्तन उल्टा है तो कटोरा क्या करेगा, बरसात क्या करेगी? बरसात आ रही है लेकिन आपका लोटा उल्टा पड़ा है, भरेगा क्या? नहीं भरेगा, कितनी भी बरसात आएगी नहीं भरेगा ना। ऐसे ही भगवान तो दयालु है, सदा दया कर रहा है, कृपालु है, सदा कृपा कर रहा है, उसकी तो कृपा सदा बरस रही है। बरसात तो मौसम में आती है, उसकी कृपा तो 12 महीने बरस रही है, लेकिन हमारा बर्तन उल्टा पड़ा है। तो साधु की सेवा करने से साधु हमारे बर्तन को सीधा कर देता है, हमारा मुख जो दुनिया की तरफ है उसको मोड़ के भगवान की ओर कर देता है। जैसे बर्तन को सीधा कर दो तो बरसात का पानी अपने आप बरसात में भर जाएगा, फिर उसको भरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान की ओर मुख करने के लिए, भगवान को उन्मुख होने के लिए साधु का संग और साधु की सेवा, साधु की आज्ञा का पालन, और साधु का संग मिलता किसको है? जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान गोविंद की कृपा होती है उसको साधु का संग मिलता है, और जिसके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं वो भक्त के संग का लाभ लेता है। नहीं तो भागवत के ऊपर देखो मक्खी मच्छर भी बैठता है, कोई इससे लाभ ले सकता है क्या? ऐसे कई लोग साधुओं के संग में रहे लेकिन कोई लाभ नहीं ले सके। भगवान साक्षात श्री कृष्ण के सामने दुर्योधन खड़ा था, कोई लाभ लिया क्या? युधिष्ठिर और दूसरी तरफ युधिष्ठिर था तो भगवान के संग में कितना बड़ा लाभ लिया धर्मराज, और एक तरफ दुर्योधन खड़ा था, कोई लाभ तो नहीं ले सका ना। स्तन तो गाय का स्तन तो वही है, बछड़ा उसमें से दूध निकाल के अमृत पीता है, और इतना बड़ा उधर एक और जीव बैठा है जो केवल खून पीता है, उधर ही बैठा है जहां दूध है लेकिन उसको दूध नहीं मिलता है, वो खून पीता रहता है। तो ऐसे भाग्यशाली को भागवत के श्रवण का सौभाग्य होता है, मिलता है, और कई जन्मों के जब भक्ति जनित सुकृत इकट्ठे होते हैं तब ऐसा शुभ अवसर आता है। तो आपके पुण्य उदय हुए हैं, श्रीमद् भागवत वो भी परम पूज्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने इस भागवत को विश्व व्यापक भाषा में अनुवाद करके बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी कृपा की है, हम सब उनके ऋणी हैं। ये बड़ा ऋषि ऋण हमको उतारना चाहिए। कल हमने 3 श्लोक पहले स्कंद में, पहले स्कंद में 19 अध्याय है, 19 अध्यायों में 3 संवाद हैं। पहले 3 अध्यायों में सनक और सूत संवाद है, दूसरे 3 अध्यायों में व्यास और नारद संवाद है, और आगे भागवत के मुख्य सुनने वाले परीक्षित महाराज का चरित्र, उनके 3 पीढ़ी माता के कुल का और 3 पीढ़ी पितृकुल की भक्ति का वर्णन 12 अध्यायों में, एक अध्याय में भागवत के मुख्य वक्ता कथा करने वाले वृक्त चूड़ामणि सुखदेव महाराज के आगमन का प्रसंग आता है। ऐसे 19 अध्याय पूरे होते हैं। पहले 3 अध्यायों कल केवल पहले 3 श्लोकों का ही हमने मंगलाचरण को पढ़ा था। मंगलाचरण का मतलब है भगवान परम सत श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भागवत में वस्तु परम धर्म है, और परम धर्म है भगवान का प्रेम, जो सबके हृदय में भरा पड़ा है उसको जागृत करना है। ये शरीर के धर्म है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये तो शरीर का धर्म है। भगवान ने जहाँ जन्म दिया, जिस घर में, उसके असली धर्म तो है आत्मा का, और आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। ये ऐसा धर्म है सनातन, जो जीव जंतु भी करता है, मानव मात्र करता है, चाहे वो देशी हो, विदेशी हो, हिंदू हो या हिंदू नहीं हो, सेवा तो करता ही है, प्रेम तो करता ही है। आप देखें, चिड़िया भी प्रेम करती है, अपने बच्चे के लिए दाना लाती है, गाय भी प्रेम करती है, अपने बछड़े को चाटती है, दूध पिलाती है, हम भी प्रेम करते हैं और सेवा करते हैं। लेकिन ये सब प्रेम और सेवा संसार का जो है, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। किससे प्रेम करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, जो सदा रहने वाला है, और सदा रहने वाला केवल श्री कृष्ण गोविंद भगवान मुरारी है, और उसकी सेवा और प्रेम करेंगे तो हम सनातन धर्म का पालन करेंगे। जीवात्मा सनातन है, धर्म सनातन है, भगवान सनातन है, इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो ये जो विषय वस्तु क्या है भागवत में, 5वां पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों का वर्णन है भागवत के पहले स्कंद में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भागवत में 5वां पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, वो परम धर्म है, वो विषय वस्तु है भागवत की। और वो आशीर्वाद क्या है, सारे संकट को, दुख को, ताप को, संताप को भागवत श्रवण मात्र से मूल से उखाड़ के निकाल देता है। और केवल सुनने के लिए घर से निकलो तो भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और सुखदेव महाराज के द्वारा ये पके हुए वेदों के वृक्ष का पका फल है। ये वेदांत सूत्र के ऊपर व्यास देव का अपना ही टीका है, और इसको सुखदेव ने अति मधुर और मीठा बनाया है। ए प्रेमियों, ए रसिकों, ए भावुकों, इसको बार बार पियो और पियो और पियो, और जब तक जियो तब तक पियो। और ये भागवत का अमृत स्वर्ग का अमृत नहीं है, ये धर्म का अमृत है, और ये भगवान के चरणों के प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है। ये स्वर्ग वाला अमृत नहीं है, जहाँ जाने के बाद वापस आना पड़ता है, ये भगवत चरणारविंद में अनुरक्ति और प्रेम करने वाला है। तो आज भागवत के पहले स्कंद के 4 श्लोक में, जहाँ भागवत का शुभ आरंभ होता है, वहां से कथा को आरंभ करते हैं। ये कथा कहाँ हो रही है, कल आपको पहली कथा वृंदावन में हुई, दूसरी कथा हरिद्वार में हुई, तीसरी सुखताल में हुई, इन सब कथाओं का कल वर्णन किया था। आज जिस कथा का वर्णन जो भागवत में शुरू होता है वो है नैमिषारण्य में। ये नैमिषारण्य का तीर्थ उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पे आज भी है। इसका नाम है चक्कर तीर्थ। पहले श्लोक में लिखा है नैमिषे अनमिष क्षेत्रे, नैमिषे अनमिष क्षेत्रे। अनमिष कहते हैं जिसकी आंखें कभी पलकें झपकती नहीं है, सदा आंखें खुली रहती हैं। ये भगवान विष्णु का नाम है, अनिमिष भगवान विष्णु को कहते हैं। पलकें नहीं झपकती है, और विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ को देखा है, उनकी आंखों के ऊपर पलकें ही नहीं है, वो तो बड़ी आंखों से सबको देखते रहते हैं। तो ऐसे भगवान जो अपने भक्त के ऊपर सदा कृपा की दृष्टि बसाते हैं उसको कहते हैं अनिमेश क्षेत्र। ये वो जगह है जहाँ भगवान विष्णु के प्रिय भक्त रहते हैं, अथवा भक्त जहाँ भगवान की आराधना करते हैं, उसका नाम क्या है? नैमिषारण्य। और इसको चक्र तीर्थ क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा चक्र बनाया था, पूरी धरती को संभाले, पूरी धरती की जितना बड़ा, पूरे ब्रह्मांड जितना, उसका केंद्र जहाँ था उसको नैमिषारण्य कहते हैं। वो चक्र का केंद्र था, जहां से चक्र घूमता था उसको नैमिषारण्य कहते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि 88,000 ऋषि भृगु वंश के सनक ऋषि के नेतृत्व में प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए कुछ तपस्या साधन यज्ञ अनुष्ठान करने की इच्छा से गए, लेकिन तीर्थ के अंदर बहुत से लोगों के आगमन के कारण उनको अनुष्ठान करने में, विधि विधान के पालन में कुछ असुविधा हुई, तो उन्होंने वहां भगवान वेणी माधव को प्रार्थना की। वेणी माधव, श्री कृष्ण वेणी माधव के रूप में वहां विराजमान है। त्रिवेणी गंगा जमुना और सरस्वती वहां भगवान के संग में खड़ी हैं, उसको वेणी माधव कहते हैं। उनको प्रार्थना की कि हम कलयुग के लोगों का कल्याण चाहते हैं, कलयुग जो अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है इसको हम रोकना चाहते हैं, और हम कुछ बहुत बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं, आप बताइए कौन से स्थान पे भगवान ये कार्य शुरू करें। भगवान ने अपने चक्र को कहा कि आप इनका मार्गदर्शन करो, आगे चक्र चला पीछे ऋषि चले, ये चक्कर इस नैमिषारण्य के स्थान के ऊपर जो ब्रह्मा जी ने इस धरती का केंद्र बनाया था वहां पाताल में चला गया और जल का स्रोत बाहर आया और वहां चक्कर तीर्थ बना, और इस चक्कर तीर्थ के किनारे के ऊपर ये 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि, ऊर्ध्वरेता कहते हैं ब्रह्मचारियों को, ये बैठ के वहां क्या करने जा रहे थे? ऋषि है सनक आद्य, सनक ऋषि उन सब में से वरिष्ठ था और उनका नेता था, उनके संग में वो सब ऋषि गए उधर। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, सत्र कहते हैं कोई लंबे समय तक, जैसे हम कहते हैं 7 दिन का सत्र है भागवत का, सत्र का मतलब धारावाहिक कथा जहां चली। स्वर्गाय कहते हैं जिसकी पूजा स्वर्ग के देवता भी करते हैं, ये भगवान का, भगवान के लिए स्वर्गाय मतलब स्वर्ग के देवता जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे भगवान के लिए, और लोकाय और भगवान के भक्तों को सुख देने के लिए। सहस्र सममासता, सहस्र का मतलब हजारों सालों तक लंबा यज्ञ करने का अनुष्ठान करके आके बैठे। क्या करना चाह रहे थे? यज्ञ करना चाह रहे थे, और यज्ञ शुरू कर दिया। और क्यों शुरू किया? कलयुग के प्रभाव को हटा के, घटा के लोगों को दुख से बचाने के लिए। और जैसे वो बैठे और उन्होंने यज्ञ शुरू भी कर दिया, और एक दिन की बात है, तए कदा तुम मुन्या प्रात्र होता होता अग्निया, एक दिन की बात है, वो अग्नि में आहुति डाल चुके थे प्रात्र, हाँ ये सुबह के समय ही जैसे अग्नि में आहुति डाल रहे थे, तो उन्होंने वहां क्या देखा? सतकृतम सूतम आसिनम, उन्होंने देखा जब वो सतकृतम, वे सतकृत अच्छा काम करने वाला, सतकृतम उसको सत्कार दिया और देखा कि उग्र सर्वा सूता, सूता जाति का नाम है। जैसे कोई कहे के प्रधानमंत्री आया तो प्रधानमंत्री की आदमी का नाम नहीं है, वो एक उपाधि है, किसी गदी का नाम है। तो सूता एक जाति का नाम है। ये सूता आया, इसका नाम है उग्र सर्वा सूता और इसके पिता का नाम है रोमहर्षण सूता। रोमहर्षण सूता व्यासदेव का शिष्य है। उसको तो बलराम जी ने तीर्थ यात्रा के समय एक तिनके से न उठने के कारण समाप्त कर दिया, उसका उद्धार कर दिया था, उसका तो शरीर छूट गया। और ये आश्चर्य लिखा है भागवत में, ऋषियों ने कहा बलराम जी कथा से पहले हमने यमराज को यहां बुलाया था कि जो कथा सुने उसके ऊपर मृत्यु ना आए, क्योंकि यमराज की छुट्टी करा दी थी तो कोई मरेगा नहीं, लेकिन आपने आते ही कथा करने वाले को ही मार दिया। तो कोई भगवान से ऊपर तो देवता है नहीं। तो बलराम जी ने कहा आपकी जो इच्छा, अब क्या करें। बोला आपने इसको सदगति दे दी है, अब आप कृपा करके इसके पुत्र के ऊपर आशीर्वाद कीजिए कि अब हमको ये कथा सुनाए। तो फिर सूता रोमहर्षण के बेटे उग्र सर्वा के ऊपर बलराम जी ने कृपा की, अपनी परंपरा भागवत की शुरू की। इससे पहले भागवत नहीं होती थी, भागवत की परंपरा उग्र सर्वा सूता से शुरू की बलराम जी ने। वो सूता अन्य पुराणों का वक्ता था, वो व्यासदेव का शिष्य था, और ये उग्र सर्वा सूता सुखदेव महाराज का शिष्य है। तो उग्र सर्वा सूता को देखा तो उनसे हाथ जोड़ के बड़े आदर से पूछने लगे, क्या है यज्ञ में मुख्य यज्ञ होता है, शाम के समय जब फ्री व समय होता है तो कहते हैं कथा सुननी चाहिए, ये यज्ञ का अंग है, ये गौण अंग है यज्ञ का, मुख्य यज्ञ है, लेकिन यज्ञ में शाम को बैठ के बेकार की बातें ना करें, इसलिए कथा सुननी चाहिए। तो उनको प्रार्थना करके और इन्होंने कहा कि अब आपको हम प्रार्थना करते हैं कि पहले तो आप त्वया खलो पुराणानि स इतिहासानि, आपको इतिहास देखो, हमारे भारत में दो इतिहास हैं, एक रामायण को इतिहास कहते हैं, एक महाभारत को इतिहास कहते हैं, इसको इतिहास कहते हैं। और पुराणानि और वेदों को आसानी से समझाने के लिए 18 पुराण है। तो आपने वेद को नहीं पढ़ा है, सूत को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो पुराण और इतिहास का अधिकारी है, वेद नहीं पढ़ता है, सूत जाति वेद नहीं पढ़ सकती है गुरु के पास। तो आपने पुराण और इतिहास पढ़ा है, हे अनंग हे निष्पाप, आप पाप रहित हैं, आपने अध्ययन किया है, धर्म शास्त्रों को आपने समझा है, आप स्निग्ध शिष्य हैं। स्निग्ध शब्द जो संस्कृत में है ना, घी को स्निग्ध कहते हैं, मक्खन को स्निग्ध कहते हैं, जैसे जहां रखो जैसे करो वहां ढल जाए। तो अच्छा शिष्य वो है जो गुरु की सेवा में जैसी सेवा में डाले वैसा करे। ऐसे जो शिष्य होते हैं उनके ऊपर गुरु कृपा करके जो उनके हृदय में दिव्य ज्ञान होता है वो दे देते हैं। तो आप स्निग्ध शिष्य हैं, आपको बड़े बड़े गुरुओं ने, ऋषियों ने और साक्षात व्यास देव ने आपको इन सब इतिहास और पुराणों के विषय में अध्ययन कराया है, आप कृपा करके हमको कथा सुनाइए। तो ऐसे प्रार्थना करने के ऊपर सूत गोस्वामी ने पहले तो उनका बड़े आदर के साथ, क्योंकि ऋषि ब्राह्मण है, भृगु ऋषि हैं के वंशज हैं, सूता ब्राह्मण नहीं है, लेकिन सूता कथा सुना रहा है और ब्राह्मण कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनने के लिए वो नहीं आए थे, वो यज्ञ करने के लिए आए थे, लेकिन यज्ञ के अंग के रूप में कथा को सुनना चाह रहे हैं। तो इन तीन अध्यायों में भागवत सुनना मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन सूता ने पहले अपने गुरुदेव सुखदेव महाराज को प्रार्थना की है। और फिर उग्र सर्वा सूता कहते हैं कि मैं अभी श्रीमद् भागवत को सुक्ताल से, जहाँ परीक्षित को सुना रहे थे सुखदेव मेरे गुरुदेव, वहाँ मैं बैठा था पीछे। मेरे गुरुदेव ने कहा आगे आकर बैठो और ध्यान पूर्वक सुनो, आगे तुमको इस भागवत की परंपरा को चलाना है तो मैं आपको उस भागवत की कथा बताने जाऊंगा, मैं आपको वो भागवत की कथा बताता हूं। ऐसे गुरुजनों को प्रणाम किया तो सनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। पहले अध्याय में ऋषियों के 6 प्रश्न हैं। देखो भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, भग कहते हैं 6 को, वान कहते हैं जिसके पास वो 6 हो, जैसे धन है और जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास भक्ति है भगवान है वो भाग्यवान है, ऐसे भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं, ये 6 गुण हैं। भग का मतलब 6 गुण। क्या भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य अनंत है, असीम है, जिसके बराबर और किसी में नहीं है? क्या है ये? सुंदरता, वीरता, ज्ञान, वैराग, बल और यश। यशस्य समग्रस्य, समग्र यश है, पूरे का पूरा यश है। श्री है, सुंदरता है, धन है, बल है, वैराग है और ज्ञान है। ये भगवान की परिभाषा पराशर मुनि ने की है। और भगवान को ही समझाने के लिए 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पूरी भागवत में भगवान कौन है इसका परिचय दिया गया है। 6 ही प्रश्न क्यों हैं? क्योंकि भगवान के विषय में जानना चाहते हैं। वैसे भागवत शब्द का अर्थ है भगवान के समान, भगवत भगवान, भगवान के समान। भगवान और भगवान, भागवत में कोई अंतर नहीं है। और भगवत कह दें तो भक्त भक्त हो जाएंगे। तो असल में भागवत पुराण भगवान और भक्तों का पुराण है, इसके अंदर भगवान और भक्तों की कथाएं हैं। तो अब 6 प्रश्न में पहला प्रश्न क्या पूछा, आत्यंतिक श्रेय क्या है सबका? कलयुग होर आया है, सबका आत्यंतिक श्रेय, आत्यंतिक श्रेय क्या शब्द, श्रेय का अर्थ क्या है? देखो 2 शब्द होते हैं, हम जल्दी भागा दौड़ी नहीं करना चाह रहे हैं। 2 शब्द होते हैं, एक प्रिय और एक श्रेय। प्रिय का मतलब है मुझे अच्छा क्या लगता है, और श्रेय का अर्थ है शास्त्र अच्छा किसको कहता है। मुझे क्या अच्छा लगता है ये प्रिय है, और शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, गुरुजन क्या कहता है, आचार्य क्या कहते हैं, वो श्रेय है। तो सारे शास्त्रों में श्रेय रास्ते के ऊपर चलने के लिए कहा गया है, प्रिय रास्ते के ऊपर चलने के लिए नहीं कहा गया है। हम सामान्य लोगों को उदाहरण देते हैं, जिसको खांसी है उसको बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, ये श्रेय है। और वो बीड़ी पीता है, क्यों? उसको अच्छी लगती है। जैसे शुगर है किसी को, उसको मिठाई अच्छी लगती है लेकिन उसको करेले का जूस पीना अच्छा है। तो कहने का श्रेय और प्रिय का परिभाषा बता रहे हैं, आपको अच्छा लगे वो प्रिय है लेकिन वो आपके हित में नहीं है। इसलिए भगवत गीता में जहां अर्जुन भगवान का शिष्य बनता है, 7वें अध्याय में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है, यत् श्रेयस्व निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम परपनम। मैं आपके शरण में हूं श्री कृष्ण, जो श्रेय है वो मुझे बताओ, जो आप अच्छा समझते हो, जो धर्म अच्छा समझता है, जो शास्त्र अच्छा समझता है वो बताओ, हमें प्रिय नहीं चाहिए। क्योंकि प्रिय आज नहीं तो कल। आपने 2 नाम सुने, द्रु का चरित्र आता है 6वें स्कंद में, और सारी 4वें स्कंद में द्रु के चरित्र में द्रु की 2 माताओं का नाम आता है आपको। एक का नाम है सुरुचि, वो अपने मनमानी करती है, प्रिय करती है, और दूसरी का नाम है सुनीति, वो श्रेय नीति के ऊपर चलती है। जो नीति के ऊपर चलता है, जो श्रेय के ऊपर चलता है, उसका जीवन ध्रुव होता है। ध्रुव के अर्थ क्या है? अटल, हिलने वाला नहीं, सदा रहने वाला। ध्रुव का मतलब होता है जो हिलता नहीं है, जो जिसको चलायमान नहीं किया जाए, जिसको हिला नहीं सके, जो सदा रहे वो ध्रुव। और जो प्रिय करता है, सुरुचि करता है, अपनी मनमानी करता है, उसको उत्तम फल मिलता है, लेकिन तत्कालीन होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो ऋषि पूछते हैं आत्यंतक, आत्यंतिक का मतलब बस इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब है परम धर्म क्या है। इसका सीधा अर्थ है, हे सूत गोस्वामी हमको बताइए, आपने शास्त्र सारे पढ़े हैं, तो परम धर्म क्या है ये बताइए। और इसका उत्तर दूसरे अध्याय में देते हैं, सवई पंशाह सवई पुंश परो धर्मो, परम धर्म वो है अधोक्षजय, इंद्रियों से परे भगवान के लिए जो प्रेम हमारे हृदय में है उसको जागृत कर दे, वो परम धर्म है। तो सबका श्रेय क्या है? ये देखो, प्रभुपाद जी महाराज जब अमेरिका में प्रचार करने गए ना, तो उनको प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने उनको ये नहीं कहा कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है, मैंने कहा कि मैं आपको भगवत प्रेम सिखाता हूं, मैं भगवत प्रेम का विज्ञान सिखाता हूं, भाई विज्ञान सिखाता हूं, ये विज्ञान है, साइंस ऑफ कृष्ण, लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रेम का ये विज्ञान है। विज्ञान है इसका मतलब इसको आप जीवन में अनुभव करके देख सकते हो। तो वो लोगों ने भगवत प्रेम कहा तो सबने स्वीकार किया, दूसरों को कहो कि नहीं तुम हिंदू बनाने आ तुमको आया हूं, तो लोग कहेंगे तुम क्यों बनाने आए, हमारा अपना धर्म है, तुम्हारी धर्म क्यों मानेंगे। प्रभुपाद ने कहा ये विज्ञान है, ये परम धर्म सिखाने आया हूं। तो ये परम धर्म क्या है? भगवत प्रेम। इसको कहा करना है, जागृत करना है, ये हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, कहीं से लाना नहीं है। ये जागृत कैसे होगा? इसको जागृत करने का एक ही रास्ता है, बार बार हरि कथा सुननी है तो ये जागृत हो जाएगा। ये उदाहरण है, हम हमेशा देते हैं, सदा देते रहते हैं। ये मई जून में पानी के नल होते हैं ना, तो बीच में हवा गर्मी के कारण हो जाती है, मई जून में पानी नहीं आता है, हवा आती है, फा फा करता है, नीचे पानी होता है लेकिन ऊपर आता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? गांव के पुराने लोग क्या करते हैं, नल से पानी नहीं आता है, हवा आती है, तो क्या करते हैं? बाल्टी भर के दो तीन जग ऊपर से पानी डालते हैं, डालते हैं ना नल में पानी, और फिर क्या होता है, हवा निकल जाती है, और फिर नल को चलाओगे तो पानी निकल आएगा, पानी तो खत्म नहीं हुआ है। ऐसे प्रेम तो अंदर पड़ा है, भगवान ने डाल के भेजा है, माया ने हवा भर दी है, कान के द्वारा दो चार कथा की बाल्टियां डालोगी तो ये प्रेम बाहर निकल आएगा। तो प्रेम निकालने के लिए कुछ और करना नहीं है। तो ये परम धर्म है, कई तव धर्म नहीं है, इसके भागवत के अंदर कोई भी धोखा देने वाला धर्म नहीं है। धोखा देने वाला धर्म कौन सा है? कई तव धर्म कौन सा है? ये काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ये दोनों डराने वाले धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? अरे भगवान से प्रेम करो, भगवान के चरणों में रहो, सुखी रहो। एक भवायक धर्म है, भय डिलाने वाला है, एक रोचक धर्म है। और धर्म अर्थ काम, इसकी परिभाषा भी भागवत में बहुत सुंदर दी है। ये चार पुरुषार्थों के नाम सबने सुने हैं कि नहीं सुने? धर्म काय के लिए होना चाहिए? धर्म के बाद क्या है? अर्थ। तो क्या धर्म धन कमाने के लिए होना चाहिए? आप देख लो पूरी दुनिया के अंदर लोग मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना क्या करते हैं? धन मिलना चाहिए। तो क्या धर्म धन के लिए है? क्या नहीं? भागवत लिखती है धर्म अपवर्गस्य, धर्म है भगवान को प्राप्त करने के लिए मुक्ति को, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, बंधन से मुक्त होना धर्म का उद्देश्य है। तो धन काय के लिए? अर्थ काय के लिए? अर्थ धर्म के लिए। अगर आपके पास धन है तो ऐसे सुंदर स्थानों के ऊपर देखो, ये मंदिर बनाया किसी ने तो धन दिया तब बने हैं ना मंदिर, ये इतने बड़े आश्रम बने हैं, मंदिर बने हैं, तो किसी का धन तो लगा होगा ना। तो धन काय है तो धर्म में लगाओ। तो धन के अर्थ के बाद क्या शब्द आता है? काम। तो क्या धन भोग करने के लिए है? लोग क्या करते हैं, धर्म से धन कमाते हैं और धन से भोग करते हैं और मुक्ति को तो भूल ही गए। चौथा पुरुषार्थ तो दुनिया को पता ही नहीं है, दुनिया से बात ही उड़ गई। तो क्या धन काहे के लिए है? धर्म के लिए। धन है तो धर्म के काम करो। तो फिर काम काहे के लिए? बोला जीवन निर्वाह के लिए। भाई जीना है तो हमारे को रहने की जगह चाहिए, खाने का भोजन चाहिए, प्रसाद खाओ। जीवन निर्वाह के लिए आपका इच्छा होनी चाहिए, कामना कितनी होनी चाहिए ये जीवन चल जाए। तो बोला जीवन काहे के लिए? तत्व जिज्ञासा के लिए। मानव बने हो तो तत्व की जिज्ञासा करो, सत्य क्या है उसको जानो। तो तत्व कौन सा है? ये भागवत लिखती है, एक अद्वैत तत्व है, एक ही अद्वैत तत्व है जिसको ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी, परमात्मा कहते हैं योगी और भगवान कहते हैं भक्त। ब्रह्मा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तत्व एक है, जैसे सूर्य एक है, सूर्य की रोशनी ये ब्रह्म के समान है, सूर्य का गोला परमात्मा के समान है, लेकिन सूर्य के अंदर सूर्य देव है जिसका नाम विवस्वान है, वो भगवान के समान है। देखो सूर्य की रोशनी को तो बच्चा भी देख सकता है, सूर्य को देखना चाहो तो सुबह सवेरे उठ के देख सकते हो, लेकिन रात को देखना चाहो तो नहीं देख सकते हो। तो योगी थोड़ी तपस्या करे तो भगवान को हृदय में देख सकता है, परमात्मा को। लेकिन सूर्य के गोले के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम सूर्य नारायण विवस्वान है, ये बात मानना कितना मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं? कोई आदमी मानेगा कि इस गोले के अंदर एक आदमी रहता है, उसका नाम विवस्वान है, उसका रथ है, उसके घोड़े हैं, उसका सारथी है, उसका नाम अरुण है, उसकी पत्नी एक है, उसका नाम छाया है, उसकी दूसरी पत्नी है, उसका नाम संज्ञा है, शनि देव उसका पुत्र है, यमराज उसका पुत्र है, जमुना उसकी बेटी है, अश्वनी कुमार उसके बेटे हैं, यह बात मानना आसान है क्या? आप लोग जरा बताओ तो कि सूर्य में परिवार रहता है सूर्य नारायण का, ये बात मानना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है ना। ऐसे भगवान को मानना बहुत मुश्किल है, परमात्मा मानना आसान है, ब्रह्म भगवान को मानना आसान है, लेकिन भगवान को भगवान मानने के लिए भक्ति चाहिए। ज्ञान से ब्रह्म का पता लगेगा, योग से परमात्मा का पता लगेगा, लेकिन भक्ति से भगवान का पता लगेगा। तो यहां कह रहे हैं कि परम धर्म सबके लिए क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत हैं, समय कम है, और कल युग में लोगों की आयु भी लोगों ने खान पान बिगाड़ के कम कर दिए। 100 साल जीना चाहिए कल युग में व्यक्ति को कम से कम, लेकिन 100 साल जीने वाले बहुत कम है, क्योंकि खान पान बिगड़ चुका है, रहन सहन बिगड़ चुका है। आप गांव में रहते हैं इसलिए कुछ शुद्ध वातावरण है, लेकिन शहरों का वातावरण तो बहुत बिगड़ चुका है, मिलावट है, जहर खा रहे हैं, जहर सूंघ रहे हैं, जहर पी रहे हैं। सुशास्त्र अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं, महाराज इतना समय नहीं है, कलयुग भारी आ गया है, लोगों का उम्र कम है, भाग्य अच्छा नहीं है, बुद्धि भी अच्छी नहीं है, सदा झगड़े में रहते हैं, बताइए एक ही साधन कौन सा है। दूसरा प्रश्न है, सारे शास्त्रों का सार एकमात्र साधन क्या है, और उसका उत्तर देते हैं, वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव की भक्ति। अगर आप करोगे तो ज्ञान वैराग उसका अपने आप प्रकट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया? सारे शास्त्रों का सार है गोविंद की भक्ति, वासुदेव की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, विट्ठल की भक्ति, ये सारे शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान सृष्टि के लिए कौन सा अवतार लेते हैं, और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए और उनकी क्या क्या लीलाएं हुई, उनका वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न पूछते हैं, ये कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होके छुप के मानव जैसी कौन सी लीलाएं कर रहे थे। और छठा प्रश्न पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम चले गए, 125 साल की धरती के ऊपर लीला करके जब गोलोक वापस चले गए, तो अब धर्म का किसने, धर्म ने किसका शरण लिया, अब धर्म किसके शरण में है? ये अंतिम क्वेश्चन प्रश्न है। ये छह प्रश्न ऋषियों के हैं और सूत गोस्वामी दूसरे अध्याय को शुरू करते ही इन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। और उत्तर देते देते भक्ति की जब बात आती है तो बड़े विस्तार से भक्ति की बात का वर्णन करते हैं। कहते हैं भक्ति के लिए हरि कथा सुनना जरूरी है। कौन सी कथा सुननी चाहिए? जो कृष्ण ने कथा बताई है। श्रुणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय हृदयांत स्थानीय भद्राणी धुनोती स्वर्द सताम। कृष्ण की कथा भगवत गीता सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। और भक्तों ने जो भगवान के प्रेम में वाणी कही है उसको सुनना चाहिए। उससे क्या होगा? बोला भगवान आपके हृदय से मैल को धो के साफ कर देंगे। फिर प्रश्न उठता है कब सुननी चाहिए? ये बहुत बड़ा भारी प्रश्न है। तब कहते हैं नित्य सुननी चाहिए, रोज सुननी चाहिए, नेम से सुननी चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, रोज सुनना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारी भक्ति निष्ठा वाली हो जाएगी, हमारी भक्ति पांचवें स्तर पे तत्काल आ जाएगी केवल भागवत सुनने से। अगर भक्तों के संग में रोज भागवत सुनेंगे तो निष्ठा तक भक्ति पक्की हो जाएगी। और फिर कहते हैं इस कथा सुनने से तमोगुण और रजोगुण समाप्त हो जाता है, आप शुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे, तो हृदय के अंदर जो अहंकार की गांठ है वो टूट जाएगी, जो संशय है वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे और अपनी आत्मा का अनुभव करोगे और भगवान का भी अनुभव कर पाओगे। ये श्लोकों की संख्या संस्कृत से बंगाली भाषा में प्रभुपाद जी ने अमेरिका में उतरते, अमेरिका की धरती के पांव रखते ही 1965 में पहले इन श्लोकों का एक भजन लिखा था, अमेरिका में भागवत धर्म, और इन श्लोकों का अनुवाद करके बंगाली में लिखा था कि कृष्ण आपने कहा है आपकी कथा से सबका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो मैं आपकी भागवत को लेकर यहाँ आया हूँ, आपने मुझे आप यहाँ लाए हैं, आपका कोई काम होगा, और आप इन सबके हृदय में भी तो रहते हैं ना, आप परमात्मा हैं तो इनके हृदय में भी रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं इनके हृदय में भी रहते हैं, और आपने अपना प्रेम इनके हृदय में भी तो भर के भेजा है ना, सबके हृदय में भेजा है, तो मुझे भी तो आप ही लाए हैं ना, तो जो मुझसे कहलाना है उनको इनको समझने का सामर्थ्य देना, ये इनको बुद्धि देना कि मेरी बात को समझ लें। और फिर प्रभुपाद ने कहा देखो मैं कठपुतली बन जाता हूँ, आप जैसे चाहो मेरे को नचाओ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप जैसे चाहो मुझे नचा लो। देखो ये बहुत बड़ी प्रभुपाद जी की पहली प्रार्थना है अमेरिका में उतरते, ये भागवत के श्लोक उनकी प्रार्थना के श्लोक हैं। और फिर भगवान जब सृष्टि करते हैं तो तीन पुरुष अवतार लेते हैं, इसका वर्णन करते हैं, तीन पुरुष अवतारों का वर्णन। इससे पहले एक बात सिर्फ कहते हैं दूसरे अध्याय में कि देखो भक्ति भगवान की होती है, देवताओं को आदर जरूर देना चाहिए, सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन जीवन एक भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि देवता की पूजा से संसार का सुख मिलता है, भगवान की पूजा से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो क्या हमको संसार में रहना है कि भगवान के धाम जाना है? संसार में जन्म मृत्यु होता है, जरा व्याधि होती है, जरा का मतलब बुढ़ापा, व्याधि का मतलब दुख, संसार दुख महल है, दुख की जगह है, और भगवान का धाम सुख की जगह है। आपको भगवान चाहिए तो भक्ति कीजिए, संसार का सुख चाहिए तो किसी के पीछे भी पड़ जाइए। और तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों के वर्णन नाम गिनवाते हैं। 24 अवतारों का वर्णन करते हुए पहले कहते हैं भगवान का सृष्टि के लिए 3 पुरुष अवतार होते हैं। इसको तम सरलता से आपको बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान आदि पुरुष है, उनके सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी प्रकट होते हैं पहले, और बलराम जी एकदम वसुदेव संकृष्ण परिद्युम्ना और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह में प्रकट हो जाते हैं, और जो संकृष्ण है इस संकर महासंकृष्ण से 3 विष्णु होते हैं, एक कारण सागर में सोने वाला विष्णु जिसके रोम कोंपों से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, दूसरा गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु जिसकी नाभि से कमल निकलता है, जिसके ऊपर कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की जन्म होता है और जो सृष्टि करता है, और तीसरा खीर सागर में सोने वाला विष्णु जो परमात्मा सबके हृदय में कण कण में अणु अणु में है, इनको कहते हैं पुरुष अवतार। ये केवल सृष्टि के लिए है, ये केवल संसार की सृष्टि के लिए है, परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है भगवान के धाम में, वहां तो भगवान रहते हैं तो परमात्मा को क्या करेंगे, परमात्मा केवल इधर है, उधर नहीं है परमात्मा, वहां केवल भगवान है। तो इसके बाद 24 अवतारों में गिनती कराते हैं, पहले कुमार हैं जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, फिर कहते हैं 6 अवतार में दत्तात्रेय जी महाराज आए, फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कच्छप अवतार मच्छ अवतार, इनका थोड़ा थोड़ा संक्षेप करते करते फिर आगे कहते हैं परशुराम का अवतार, भगवान रामचंद्र का अवतार, कृष्ण बलराम, फिर बुद्धा, फिर कल्कि आएगा। ऐसे गिनती करते करते व्यास देव थोड़ा सा विचलित हो गए, मैंने कृष्ण का नाम अवतार में कैसे गिना दिया। तब उन्होंने एक प्रसिद्ध श्लोक कहा है, इस श्लोक को भागवत का परिभाष सूत्र कहते हैं। भागवत का परिभाष सूत्र का मतलब है सारी भागवत इस श्लोक के ऊपर केंद्रित है। उस श्लोक का पहला शब्द है एते चांश कलाह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। ये जितने अवतार मैंने आपको सुनाए, व्यासदेव कहते हैं ये या तो भगवान के अंश हैं या कला हैं। अंश का मतलब भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक को कहते हैं स्व अंश, जैसा भगवान ऐसा आपने जैसा दूसरा बना दें, जितने विष्णु तत्व हैं वो सब स्व अंश हैं, और दूसरे को कहते हैं विभिन्न अंश, हम सब जीव भगवान के अंश हैं लेकिन विभिन्न अंश हैं। और फिर आगे भगवान ने बताया है जीव 2 प्रकार के हैं, एक नित्य नित्य मुक्त जीव जो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, और दूसरे नित्य बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में रहते हैं। इस जगत के संभालने के लिए दुर्गा है। दुर्ग किसको कहते हैं भाई, शिवाजी महाराज ने बहुत बहुत दुर्ग बनाए, दुर्ग बोलते हैं ना किले को, ये संसार एक दुर्ग है जिसकी मालिक है दुर्गा, और दुर्ग की मालिक है दुर्गा, और इसमें रहते कौन है, बद्ध जीव रहते हैं। वो क्या चाहते हैं, इस संसार में सुख चाहते हैं। अगर कोई भगवान का भक्त उनको कृपा करके भगवान की तरफ उन्मुख कर दे तो वो मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। एते चांश कलह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये या तो अंश है या कला है, लेकिन स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान का मतलब सारे भक्तों भगवान के अवतारों का आदि कारण अवतारी पुरुष, वो अवतार नहीं है, अवतारों का कारण है। आपको शनिवार की शाम को नहीं तो रविवार को कथा में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कैसे अवतार लेते हैं, कब लेते हैं और उनका रूप कैसा होता है, ये हम आपको बताएंगे रविवार के दिन जब कृष्ण जन्म का प्रसंग आएगा। यहां से आगे कथा को बढ़ाते हैं तो 24 अवतारों का वर्णन हो गया, बाकी 9 स्कंद में बाकी सब भगवान के अवतारों का वर्णन है, 24 अवतारों में हर एक का वर्णन है। अब एक प्रश्न रह गया, 10 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, एक प्रश्न रह गया तीसरे अध्याय के आखिर में उसका उत्तर देते हैं। वो छठा प्रश्न क्या था आपको याद है? हाँ, छठा प्रश्न क्या है? भगवान जब धर्या धाम से चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया? ये है प्रश्न का उत्तर, ध्यान से सुना। ये ध्यान से इसलिए सुने क्योंकि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये भगवान है, ये लिखा है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषः कलौ नष्ट दृश्यम एषः पुराण अरको अधनो उदिता। ये छठे प्रश्न का उत्तर क्या है? भगवान जब अपने धाम चले गए, श्री कृष्ण स्वधाम उपगते, जैसे भगवान अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान आदि विषः, अपने अंदर धर्म को लेकर ज्ञान को लेकर साथ साथ में कलौ नष्ट दृश्यम, कलयुग के अंदर जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, जिनको कुछ नहीं दिखता है, उनके ऊपर कल्याण करने के लिए प्राण अर्को, भागवत रूपी प्राण का सूर्य का उदय हुआ। तो कृष्ण यहां से अपने धाम जा रहे हैं और यहां से भागवत रूपी पुराण का सूर्य का उदय हो रहा है। ये भागवत कैसा पुराण है? तब लिखते हैं, इदं भागवत नाम पुराणम ब्रह्म समितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि नैश्रियास लोकस्य धन्यस्य स्वस्ति अयनम। ये भागवत नाम का जो पुराण है इसमें क्या है? भगवान का नाम है, भागवत नाम पुराण है, तो भगवान का नाम लेना चाहिए तो उसके अंदर सब कुछ है। जैसे छोटे से बीज के अंदर पूरा बरगद का वृक्ष होता है, ऐसे एक भगवान के नाम में भगवान का नाम रूप लीला गुण सब है। तो बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम है। पुराणम ब्रह्म समितम, ये ब्रह्म सूत्र के ऊपर व्यास देव की टीका है इस पुराण। ये उत्तम श्लोक चरित्र, इसके अंदर भगवान का चरित्र है, भगवान के सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। चकार भगवान ऋषि नेश्रेयस और बादरायण भगवान व्यासदेव, व्यासदेव भगवान का अवतार है, उसने इस प्राण को प्रकट किया है। लोकस्य धन्य से, ये लोगों का धन्य करने के लिए है, कल्याण करने, स्वस्ति अयनम, ये सबका भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए। ये महान मंगल है लोगों का कि भागवत का श्रवण कर ले। और आगे लिखते हैं कि व्यास के ये कैसे नीचे आई, तदिदम ग्रहायाम आस सुतम आत्मताम आत्मवताम वरम। व्यास देव ने इसको प्रकट किया, फिर अपने पुत्र सुखदेव को ये जो श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, महान है, उसको सिखाया। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद का और इतिहास का जो सार है उसको उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया। व्यास देव ने अपने पुत्र को सिखाया। सत्तु सत्तु संसरावायम आस महाराजम परीक्षतम, उन सुखदेव महाराज ने ये भागवत फिर परीक्षित महाराज को सुनाई। ये बता रहे हैं, कथा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न उठेगा। अब क्या प्रश्न उठता है वो सुनिए। महाराजम परीक्षतम प्रायो उपविष्टम गंगायाम, गंगा जी के किनारे के ऊपर आके बैठ गए थे महाराज परीक्षित। क्यों आके बैठ गए थे? परीतम परमा परमा ऋषि भी, परम ऋषि भी बहुत सारे ऋषि वहां बैठे थे, वहां परीक्षित महाराज आके गंगा के किनारे बैठ गए थे। अब क्यों बैठ गए थे वहां आके, तब अब प्रश्न उठता है। प्रश्न तीन है, सनकादि ऋषि कहते हैं, व्यास देव ने कहां, कब, किसकी प्राण प्रेरणा से भागवत को प्रकट किया, भागवत कब प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, किसकी प्रेरणा से प्रकट हुआ, भागवत की इतिहास बताओ। दूसरा प्रश्न है, सुखदेव महाराज ऐसे विरक्त हैं जो किसी के घर के दरवाजे के ऊपर 7 मिनट तक नहीं रुकते हैं दूध के लिए, उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन कैसे किया, इतना पढ़े कैसे, उनको तो ब्रह्म आनंद में रहते थे, उन्होंने ये पढ़ा कैसे। तीसरा प्रश्न ये है कि परीक्षित नौजवान थे, एक छत्र इस पृथ्वी के राजा थे, तो उन्होंने राजपाट छोड़ के गंगा के किनारे के ऊपर अनशन होवन भो के क्यों बैठे। तीन प्रश्न। अब इन तीन प्रश्नों के उत्तर में, वैसे भी सूत गोस्वामी कहते हैं आपका प्रश्न कृष्ण के संबंध में है इसलिए सबका भला करने वाला है, तो इसके उत्तर में बाकी पूरा स्कंद है, पहला स्कंद इसके उत्तर में है। तो अब इसका उत्तर देते हुए पहले कहते हैं भागवत कहां प्रकट हुई, बोले भागवत बद्री का आश्रम में प्रकट हुई। बद्री का आश्रम में व्यासदेव का आश्रम है, संप्रासायण नाम का एक व्यासदेव की गुफा है। आप में से कोई बद्रीनाथ गए हैं, आप जो बद्रीनाथ गए हैं, बद्रीनाथ है नारायण पर्वत के ऊपर, नर पर्वत के ऊपर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो माना गांव है, और माना गांव में 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है व्यासदेव की गुफा के ऊपर, उससे पहले गणेश जी की गुफा है क्योंकि महाभारत व्यासदेव ने लिखाई और गणेश जी ने लिखी थी, और दूसरे तरफ से जाएंगे तो सरस्वती नदी का वो प्रकट स्तर दिखाई देगा। तो ये बहुत सुंदर स्थान है, वहां व्यासदेव का आश्रम है, वहां ये भागवत कलयुग में प्रकट हुई, द्वापर के अंत में, कलयुग के आरंभ में प्रकट हुई। जब युग परिवर्तन हो गया तो ये भागवत किसने प्रकट की, व्यास ने। तो क्या इसका मतलब पहले भागवत नहीं थी क्या, तो पहले व्यास देव ने भागवत कही इससे पहले नहीं थी क्या, नहीं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तब थे, अब नहीं है क्या, अब है कि नहीं है भगवान, अब है कि नहीं है, आज भी है ना, अब प्रकट नहीं है, अब प्रकट रूप से तो भगवान है, तो भागवत भी भगवान ही है, तो वो अप्रकट था उसको प्रकट कर दिया। तो भागवत नित्य है, कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है, जैसे भगवान नित्य है, कभी अवतार लेते हैं, कभी प्रकट होते हैं कभी अप्रकट होते हैं। कल भी आपको भगवान की लीलाएं 2 प्रकार की बताई थी, प्रकट और अप्रकट लीला, नित्य लीला अप्रकट लीला है, अवतार की लीला प्रकट लीला है, व्यवहार की लीला है, ये थोड़े समय के लिए आती है। तो भागवत तो नित्य है, लेकिन व्यास देव जैसे किसी ऋषि के हृदय में प्रकट होती है तब वो हमारे को मिलती है। तो व्यास देव ने किसकी प्रेरणा से भागवत को लिखा, तब कहते हैं व्यास देव के गुरुदेव नारद जी की प्रेरणा से भागवत प्रकट हुई। व्यास देव ने कलयुग को देखा, कलयुग के लोगों के दुख को देखा, कलयुग के अधर्म को देखा, तो कहा कि ये वेद नहीं पढ़ सकेंगे। एक वेद को 4 में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर कहा नहीं वेद भी इनको समझ में नहीं आएगा तो उपनिषद लिखे, फिर कहा स्त्री क्या पढ़ेगी बेचारी, गुरु के पास जाती नहीं है, तो महाभारत लिखा और कहा कि ये नारी के लिए है, ये मजदूरी करने वाले के लिए है, ये व्यवसाय करने वाले के लिए है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सुंदर रोचक कथाएं हैं कि सब लोग सुनेंगे। महाभारत का जब नाम लेते हैं तो इसको 5वां वेद कहते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के शासन के समय हमारे पंडितों को किराए के ऊपर खरीद करके उन्होंने हमारे दिमाग में एक भ्रांति डाल दिया कि महाभारत लड़ाई है, महाभारत घर में रखोगे तो लड़ाई होगी। ये झूठ है। महाभारत का अर्थ लड़ाई नहीं है, महाभारत का अर्थ है भारत का महान इतिहास, भारत की महान कथा। उसके अंदर 18 दिन की कुरुक्षेत्र की लड़ाई का एक थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन वो झगड़ा करने के लिए नहीं है, वो झगड़ा मिटाने के लिए है। तो महाभारत का पाठ 4 महीना चतुर्मास में करना चाहिए। ये 5वां वेद है, ये व्यास देव की रचना है और ये सामान्य कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए है। उसके बाद व्यास देव ने वेदांत सूत्र को लिखा, 17 पुराण लिखे। लेकिन व्यास देव सरस्वती नदी के तट पे अशांत बैठे थे। इतना मैंने आसान कर दिया धर्म को, लेकिन मैं ही संतुष्ट नहीं हूं तो इसको पढ़ने वाले कैसे संतुष्ट होंगे। जैसे व्यास देव को अपने अंदर थोड़ी सी कमी का नजर आया, उसी वक्त उनका गुरुदेव वहां नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी आए, व्यास देव ने आसन दिया, सम्मान किया, विराजमान किया और नारद ने हंसते हुए पूछा कि पराशर के पुत्र, तुम बड़े तपस्वी हो, बड़े शास्त्र के मर्मज्ञ ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप चिंता में क्यों हैं? तो व्यास देव कहते हैं, गुरुदेव आप हमारे हृदय में देखो, हमारा चिंता का कारण क्या है। सूर्य का प्रकाश सब जगह पहुंच सकता है, हवा सब जगह पहुंच सकती है, आप गुरुदेव हमारे हृदय को देखो। तब व्यास देव ने कहा, तब व्यास देव को नारद ने कहा, व्यास देव तुमने वेद पुराण में 3 बातें लिखी है, लोग स्वर्ग में कैसे जाएंगे, भोग कैसे करेंगे, कर्म कांड को इतना लिखा है, ज्ञान कांड को लिखा है, लेकिन भगवान की भक्ति को एक जगह पे नहीं लिखा है। तुम्हारे शास्त्र को पढ़ के लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा करेंगे। आपने देखा है सब लोग कहते हैं स्वर्ग जाएंगे ना, और दुख से एक और आपको हंसी की बात समझ में आती है, जब किसी का मरण होता है ना तो चिट्ठी में क्या लिखते हैं, दादाजी दुख से लिखना पड़ना है, बड़े दुख की बात है कि दादाजी स्वर्गवास हो गए। अरे भाई स्वर्गवास हो गए तो दुख क्यों कर रहे हो, खुश हो जाओ ना, स्वर्ग में चला गया है भाई, स्वर्ग में गया है तो भी दुखी हो रहे हो क्यों, इसका मतलब स्वर्ग में जाना कोई अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि वहां जाएगा फिर वापस धरती के ऊपर आना पड़ेगा। ऐसे भगवत गीता का श्लोक है, तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विचंति एवं त्रिदर्पणम अनुपना गागता गतम काम कामा लभंते। जाओ एक बार स्वर्ग में, पुण्य पूरा हुआ तो वापस धरती के ऊपर। अभी आप कौंडिन्यपुर धाम आए हो, 7 दिन कथा पूरी हुई तो वापस जहां से आए हो नागपुर जाओगे कि यहां बैठोगे? अरे भाई धाम है क्यों जाते हो, बैठे रहो ना, या नहीं बैठोगे वापस जाओगे, पुण्य पूरा हुआ वापस जाओ। ऐसे भगवान के स्वर्ग गया तो वापस आना पड़ेगा। तो आपने स्वर्ग का बहुत बड़ा ललचाने वाला, मन को खींचने वाला इतना वर्णन किया है कि लोग फिर भगवान की तो भक्ति करेंगे नहीं। व्यासदेव ने कहा, मैंने महाभारत लिखा है, उसमें भगवत गीता लिखा है, कृष्ण की कथा लिखी है। हाँ, नारद जी हंसने लगे कि इतने सारे स्वर्ग के लुभाओं ने शास्त्र के अंदर इतना छोटा सा गीता लिखा, उसमें क्या होगा। एक इसके ऊपर हमको हंसने की बात याद आती है, एक आदमी होटल में गया रसोई के लिए, पूछा कौन सी सब्जी बनाई है, तो उसने कहा अंगूर की और कद्दू की सब्जी। कद्दू सब समझते कि नहीं, इतना बड़ा होता है। बोला कद्दू और अंगूर की सब्जी है, बोला ले आओ। वो ले आया तो एक भी अंगूर नहीं था, केवल कद्दू ही कद्दू था। उसने बोला तुमने कहा था अंगूर और कद्दू की है, मैंने कहा था आपको आधा आधा है। बोला आधा आधा है तो आना चाहिए ना अंगूर। बोला एक कद्दू डाला एक अंगूर डाला। अब वो आधी आधी सब्जी, एक अंगूर एक कद्दू, बताओ एक कद्दू और एक अंगूर ही सब्जी बनाओगे तो आपको सब्जी में कद्दू आएगा कि अंगूर आएगा? हाँ, कद्दू ही आएगा ना, तो माँ तो व्यासदेव आपके शास्त्र में कद्दू ही भरा हुआ है, अंगूर तो कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए अब आप समाधि में बैठकर एक ही जगह पे भगवान के नाम रूप गुण लीला प्रकाशित करो। और फिर नारद को बड़ा आनंद आ गया, उसने अपनी तीन जन्मों की कथा बता दी। का पहले मैं उपभ्रंश नाम का गंधर्व था, मेरे साथ सुंदर स्त्रियां थी, मैंने भगवान का गीत न गा के संसारी कुछ गाया, मेरे को वहां से नीचे धरती के ऊपर कन्या कुबज नगर में दुर्मल गोप के घर में दासी पुत्र का जन्म मिला। मैं दासी का पुत्र था, मेरी मां ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी, गाय की सेवा करती थी। एक बार चतुर्मास में कुछ भक्ति वेदांत महात्मा आए थे, मेरी मां ने उनकी सेवा की। मैं छोटा बच्चा था लेकिन मैं शरारती नहीं था, मैं खेल कूद में मेरे को रुचि नहीं थी, मेरी इंद्रियां वश में थी, मैं उनकी सेवा में लग गया। उन महात्माओं ने उनकी आज्ञा से मैंने उनका एक दिन उचिष्ट महाप्रसाद पाया और उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके दिव्य ज्ञान दिया। 4 महीने के बाद महात्मा चले गए, मैं उनके साथ जाना चाह रहा था, उन्होंने कहा नहीं तुम रहो, मेरी माँ को मुझ में मोह था। एक दिन माँ मेरी दूध निकालने गाय का गई, रात को सांप ने उसको काट लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने कहा भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मेरी माँ बड़ी दुखी थी, मेरे पालन पोषण के लिए मजदूरी करती थी, मुझ में ममता थी, भगवान ने उसको बुला लिया, अब मैं आजाद हो गया। नारद कहता है मैं उत्तर दिशा में गया, जंगलों से होता हुआ, पर्वतों से होता हुआ, सरोवर से होता हुआ, एक पेड़ के नीचे सरोवर में नहा के बैठा, जैसे भक्ति वेदांतों ने मुझे ज्ञान दिया था। मैं ध्यान में बैठा तो साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, मैं गदगद हो गया। लेकिन फिर दर्शन खत्म, मैं छटपटाया, मैंने फिर स्नान किया, फिर आचमन किया, फिर वही मंत्र पढ़े, कुछ दिखाई नहीं दिया। आकाशवाणी हुई, नारद अभी तक तुम कच्चे हो, अपक्वा पक्के नहीं हो, कश्मलायम तुम्हारे अंदर कुछ कचरा पड़ा है, तुम साधन करते रहो। बोला कच्चे किस बात में हो? बोला तुम जंगल में मुझे ढूंढ के आने आए हो कि सब जगह भगवान नहीं है क्या? जब सब जगह भगवान है तो जंगल में क्यों आने की जरूरत थी? और कुछ अभी तक कचरा है इसलिए तुम साधन करो। और नारद ने कहा मैं साधन करता रहा, एक दिन ऐसा आया मेरा ये शरीर छूटा और तत्काल मेरे को दिव्य शरीर मिला, भगवान ने मेरे को वीणा दे दी और अब मैं इस वीणा के ऊपर हरि गुण गाता फिरता हूँ। 3 जन्म की कथा नारद ने अपनी बताई और फिर नारद उत्तर दिशा की तरफ अपने गुरु आश्रम चले गए। अब व्यास देव भक्ति योग से मन को एकाग्र करके सरस्वती का जल लेके ध्यान में बैठे तो उनके हृदय में भगवान का दर्शन हुआ। व्यासदेव ने भगवान को देखा, भगवान की सारी शक्तियों को देखा, भगवान की सारी शक्तियों को व्यासदेव ने देखा, पूर्ण भगवान को देखा। भगवान की 3 शक्तियां मुख्य रूप से हैं, आप लोग जानते हैं भगवान की 3 शक्तियों को। एक भगवान की अंतरंग शक्ति जिसका स्वरूप राधा रानी है, रुक्मणी है, लक्ष्मी है, सीता है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। एक भगवान की बाहरंग शक्ति है, इस भौतिक जगत को चलाने के लिए उसका रूप है दुर्गा अंबिका। तीसरी भगवान की शक्ति है हम जीव आत्मा है, इसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति, बाहरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, तो ये 3 शक्तियां हैं भगवान की। तो अंतरंग शक्ति तो भगवान की भगवान के साथ ऐसे होती है जैसे चांद के साथ चांदनी, चांद से चांदनी अलग नहीं की जा सकती, ऐसे भगवान की अंतरंग शक्ति भगवान से अलग नहीं की जा सकती। अब ध्यान से सुनिए, बाहरंग शक्ति माया भगवान के पीछे रहती है, आगे नहीं आती। भगवान की पीठ में क्या है? माया। वो भगवान के आगे आने में लज्जा करती है, कभी नहीं आती। और लज्जा क्यों करती है? क्योंकि भगवान के ही अंश जीवों को जेल में बंद करके दंड देती है। तो माया कहां होती है? भगवान के पीछे। इसका मतलब भगवान को पीट देंगे तो माया पकड़ लेगी, भया भगवान के सामने रह के रहेंगे तो माया नहीं आएगी। माया है भगवान के पीछे लेकिन है भगवान के वश में, भगवान के पूरे वश में। जैसे छाया, अपनी छाया आपके हाथ में, आपका हाथ हिलाओ आपकी छाया हिलती है ना, ऐसे माया भगवान जैसे चाहते हैं ऐसे काम करती है। अब तीसरी बात सुनिए, हम सब जीव माया के बंधन में है, ये व्यास देव ने देखा। और बीमारी हमको, हमारी बीमारी को व्यास देव ने पहचान लिया कि सारे जीव माया के बंधन में है। और व्यास देव ने लिखा है अनर्थ कर रहे हैं अपना, क्या कर रहे हैं? अनर्थ कर रहे हैं। तो क्या आप सब लोग अनर्थ करते हो क्या? अनर्थ का अर्थ तो आता है ना सबको, अपना भला ना करे, अपना बुरा करे, उसको बोलते हैं अनर्थ। जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं करे, टीवी देखे तो क्या कहेंगे? अनर्थ कर रहा है, पढ़ना चाहिए, ये टीवी क्यों देख रहा है? ऐसे अनर्थ कर रहे हैं सब लोग जीव, ये बीमारी है हमारी। अनर्थ क्या कर रहे हैं? व्यासदेव ने ऐसे क्यों लिखा? व्यासदेव ने अनर्थ इसलिए लिखा कि हम सब शरीर के लिए काम कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन नहीं कर रहे हैं। हम कौन है हमको मालूम नहीं है। हमारी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, जो हमारी असली पहचान है उसको छोड़कर हम शरीर के लिए सारा समय बिता रहे हैं। शरीर को तो रोज स्नान कराते हैं, शरीर के ऊपर रोज कपड़े बदलते हैं, शरीर को रोज 3 टाइम भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा के भोजन का कभी प्रबंध किया? आत्मा को क्या आवश्यकता है उसका कभी ध्यान किया? नहीं किया तो अनर्थ कर रहे हैं। और फिर व्यास देव ने कहा ये तो बेचारे नहीं जानते हैं कि अपना अनर्थ कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, तो इनको अनर्थ से बचाने के लिए व्यास देव ने भागवत को प्रकट किया। और भागवत को केवल सुनने मात्र से, ये बहुत सुंदर श्लोक है, 5-6 श्लोकों का पाठ करें, लेकिन समय अपने पास कम है। हमको तो अच्छा लगता है श्लोकों के पाठ करने से, आनंद लेने का, लेकिन अब ये 7वें श्लोक अध्याय के श्लोक हैं। अनर्थो उपशमनम उपशमनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजय। आपको अनर्थ से बचना है ना, अनर्थ का उपशमन करना है, खत्म करना है, तो भक्ति योग का सहारा ले लो। किसका भक्ति योग? अधोक्षजय, जो इंद्रियों से परे भगवान है। अधोक्षजय इंद्रियों से परे भगवान का सहारा लो। लोकस्य अजानतो विद्वान चक्रे सात्वक संहिता। लोग नहीं जानते हैं लेकिन मैं तो जानता हूं, इसलिए इनका भला करने के लिए मैंने सात्वत संहिता को तैयार किया। अब कहते हैं इस भागवत की महिमा क्या है। यस्याम वैश्वर्यमानायाम, अगर केवल आप इसको सुनेंगे, आप सुन रहे हैं, अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा, तो परम पुरुष कृष्ण के लिए आपकी भक्ति जो अंदर है वो जागृत हो जाएगी। केवल सुनने से कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाएगी। बोला हमारे को पता कैसे लगेगा? तब 3 बातें कहते हैं, शोक मोह भय अपाह। आपका शोक चला जाएगा, मोह चला जाएगा, भय चला जाएगा। शोक मोह और भय तीनों चले जाएंगे। शोक कब का होता है? शोक होता है भूतकाल का, जो गुजर गया उसका शोक होता है। जो आदमी मर जाता है कहते हैं शोक सभा, गुजरी चीज के दुख को शोक कहते हैं। वर्तमान में किसी को पकड़ के रखो उसको मोह कहते हैं। और भय होता है भविष्य का, आगे क्या होगा उसको भय है। तो तीनों कालों से मुक्त हो जाओगे। केवल कृष्ण की कथा सुनने से, भागवत को सुनने से इतना बड़ा लाभ होगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का ये उत्तर है, क्या भागवत कहां, किसकी प्रेरणा से, किसने लिखी? अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देने, सुखदेव ने कैसे सुनी? तो लिखा है, सत्संगतां भागवतीं कृत्वा नुकर्मया चात्मजम्। जैसे उन्होंने इसको प्रकट किया अपने ही पुत्र सुखदेव को, इसका अध्ययन कराया पढ़ाया। शुकम अध्याप्याम आस निवृत्ति निरंतम मुनि, किसको पाठ कराया? अपने पुत्र सुखदेव को। आगे कथा आएगी। सुखदेव माँ के, पहले तो व्यासदेव को कोई शादी करने की जरूरत नहीं थी, भगवान का अवतार था, लेकिन उसको भागवत को सिखाने के लिए योग्य शिष्य चाहिए था, इसलिए उन्होंने जाबाल ऋषि की पुत्री वाटिका से विवाह किया। सुखदेव कौन है? सुखदेव तोता है राधा रानी का। राधा रानी को कृष्ण की कथा सुनाता है, सुख है तोता। कैसे ये सुख धरती के ऊपर आया, ये बड़ा अद्भुत कथा है अपने आप में। एक बार नारद जी पार्वती को मिले और कहा कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। बोला भोलेनाथ से मुझसे ही प्रेम करते हैं और किससे करते हैं? बोला अगर तुमसे प्रेम करते हैं तो उनसे पूछो कि उनके गले में मुंड की माला किसकी है, और अगर आपको बताएंगे नहीं, आप जिद करना फिर बताएंगे, और जब बता दें तो आप उनको बोलना मुझे अमर बना दो। शंकर जी आए तो पार्वती ने कहा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोला आप तो मुझे बहुत प्रिय हैं पार्वती। बोला फिर आपके गले में ये माला है किसकी है, मुंड की? बोला इस बात को छोड़ो। बोला नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो नारद मिला था क्या पार्वती, तुम ऐसे प्रश्न पूछ रही हो? बोला नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बोला तो सुनो, ये तुम्हारे 51 खोपरियां हैं, इससे पहले तुम मेरी पत्नी बनी, ये आखिरी खोपरी सती की है, और ये सब मैं यहां बांध के रखी है। अब पार्वती कहती है मुझे अमर बनाओ, अब मेरी खोपरी तुम्हारे गले में नहीं लटकेगी, अमर बना दो। बोला फिर चलो अमरनाथ। चले गए अमरनाथ, पार्वती बैठी, शंकर जी ने तांडव नृत्य शुरू किया प्रलय काल वाला। बोला क्यों? बोला कोई जीव यहां नहीं होना चाहिए, ये कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, मैं भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं। तांडव नृत्य किया, सब कुछ जीव वहां से भाग के चले गए। पार्वती बैठी थी, बोला मैं कथा सुना रहा हूं, तुम हूं करती रहना, हां जी ऐसे बोलती रहना। पांचवें स्कंद तक पहुंचे तो पांचवें स्कंद में असल में कथा क्या है, खगोल भूगोल की कथा है, ये तारा मंडल की कथा है, ग्रहों नक्षत्रों की कथा है। पार्वती जी सो गई, उनको आ गई निद्रा। एक अंडे में छोटा सा तोता था जो अंडे से बाहर निकला, और अब हां जी हां ये कर रहा है। थोड़ी देर के बाद शंकर जी ने आंखें खोली तो पार्वती को तो निद्रा है, ये हां हूं कौन कर रहा है? तोते को देखा, और ये कहां से आ गया, इसने भागवत सुन ली, ये तो अधिकारी नहीं है। त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे, तोता वहां से भागा सीधा वाटिका के मुख से उसके पेट में चला गया। अब ये कथा भागवत की शंकर जी से भी सुन के आया, ये राधा रानी का तोता है। अब वाटिका के गर्भ में आया तो जन्म नहीं ले रहा है, व्यासदेव ने कहा जन्म ले लो बेटा। बोला माया पकड़ लेगी भगवान की? बोला नहीं पकड़ेगी। बोला तेरी है क्या, आपकी मानती है माया? देखो एक राजा की सवारी आ रही थी, राजा का शोभा यात्रा जा रही थी, एक साधु रास्ते में सोया हुआ था। सिपाहियों ने कहा हटो हटो हटो, महाराज की सवारी आ रही। बोला महाराज क्या होता है? बोला सब उसकी आदेश मानते हैं। बोला अच्छा ठीक है, मैं महाराज से पूछता हूँ, आने दो। महाराज आया, इस साधु ने कहा महाराज आप राजा हैं? बोला हाँ राजा हूं। तो सब आपका आदेश मानते हैं? बोला हाँ मानते हैं। बोला महाराज ये मच्छर मेरे को बहुत परेशान करता है, इसको बोलो मेरे को नहीं काटे। राजा कहता है मच्छर तो मेरी नहीं मानता है। बोला मच्छर तेरी मानता नहीं है फिर किस बात का राजा, मानता तो तेरी मच्छर भी नहीं है तो राजा किस बात का है? तो ऐसे किसकी बात कर रहे थे? अरे कृष्णा, सुखदेव महाराज ने कहा कि माया आपकी मानती है क्या? उस वक्त भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे। सुखदेव महाराज के लिए व्यासदेव कृष्ण को बुलाकर लाए। कृष्ण ने कहा, सुखदेव तुम अब माता के गर्भ से मुक्त होके आ जाओ। बोला माया मेरी है, तुम्हारे को नहीं छुएगी। भगवान ने कहा माया मेरी है, ये भगवत गीता में भगवान ने कहा है, माया अधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तते। ये मेरी अध्यक्षता में काम करते, तेरा कुछ नहीं करेगी। सुखदेव जन्म लिया, अपना नारा था ना वो जनोई की तरह पहन लिया, कोई संस्कार नहीं किया और चल दिए। व्यासदेव पीछे चला, बेटा बेटा बेटा, केवल पेड़ों से आवाज आ रही है, बेटा बेटा बेटा। बस एक सरोवर में स्त्रियां नहा रही थी नंगी, जैसे छोटे वस्त्र में। सुखदेव नग्न अवस्था में वहां से गया, कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ था, स्त्रियों ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं किया। व्यासदेव धोती पहने हुए जा रहे थे, ओत्री ओढ़ी हुई थी, लड़कियों को लज्जा आई, उन्होंने वस्त्र धारण किया, प्रणाम किया। व्यासदेव को आश्चर्य हुआ, कहा देवियों मेरा पुत्र नवयुवक 16 साल का नग्न अवस्था में जा रहा है, उसको देखकर आपको लज्जा नहीं आई? मैं तुम्हारे दादा के समान वस्त्र पहना हुआ, तुम ऐसे वस्त्र लेके हाथ जोड़ के क्यों खड़ी हो? स्त्रियां कहती हैं, आपके पुत्र को स्त्री और पुरुष के भेद का पता नहीं है, उसको पहाड़ और पर्वत और पेड़ सब एक जैसे दिखते हैं, वो सबके अंदर आत्मा को देखता है, उसको शरीरों के भेद का पता नहीं है। महाराज आप गृहस्थी हो, आपको स्त्री और पुरुष के भेद का पता है, इसलिए मर्यादा में हमने वस्त्र को धारण कर लिया। तो इस कोटि के सुखदेव महाराज थे, चले गए। व्यासदेव ने कहा, विवाह किया था कि भागवत पढ़ाऊंगा, अब भागवत इसको कैसे पढ़ाऊं? ये कैसा है, ये स्वयं कहते हैं कि मैं कैसा हूं। सवई निवृत्ति नृत्या, वो पहले ही निवृत्ति मार्ग में ब्रह्म के आनंद में था, ब्रह्मनिष्ठ था। आत्मा रामा, वो अपनी आत्मा में रमण करता था। इसके बाद बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, आत्मा रामश्च मुन्यो निर्गंता कर्मय कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। इस श्लोक का चैतन्य महाप्रभु ने दो दो बार 64 बार अर्थ किया, एक एक शब्द का कई अर्थ किए, लेकिन आपका विषय ये नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि सुखदेव महाराज पहले ही ब्रह्म आनंद में थे, आत्मा राम थे। तो क्या किया व्यासदेव ने, कुछ भागवत के श्लोक अपने शिष्यों को याद कराए, जयमणि पायल आदि और शिष्य जो हैं। कहा कि जंगल में जब वो लकड़ी लेने जाते हो, जब फूल लेने जाते हो, तो ये श्लोक गाया करो। एक जगह सुखदेव महाराज ब्रह्मानंद की समाधि में थे और एक श्लोक गा रहे थे व्यासदेव के शिष्य, ब्रहा पीडम नटवर वपु करणियो करणिकारकम। ये वेणु गीत का श्लोक है, गोपियां गाती हैं, पहला ये गोपियों का गीत है भागवत में, कि श्री कृष्ण जब मोर मुकुट पहनकर बांसुरी अधरों का ऊपर पधराकर वैजंती माला पहनी, ग्वाल बालों के कंधे के ऊपर हाथ रखे, अपने गायों को लेकर वन में जब प्रवेश करते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, जैसे कोई नटवर जा रहा है नृत्य करता हो। ये सुनकर सुखदेव महाराज का ब्रह्मानंद उठ गया, उनके पीछे भागे कि ऐसा सुंदर कौन है। तो सुखदेव को उत्तर मिला व्यासदेव के शिष्यों से कि हम क्या, हमारे गुरु को मालूम है, हमें मालूम नहीं। सुखदेव कहा कि कोई सुंदर तो हो सकता है, लेकिन सुंदर लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, अगर व्यवहार अच्छा नहीं हो तो उसके पास जाके क्या करूं। फिर वापस आ गए, फिर ब्रह्मानंद में बैठ गए। कुछ दिनों के बाद एक और श्लोक पढ़ते हुए जा रहे थे, और ये श्लोक तीसरे स्कंद का है, उद्धव के मुख से निकला, अहि बकी काल कूटम जिघान। बकासुर की बहन पूतना कूल के कालकूट विष स्तन के ऊपर लगाकर कृष्ण को विष देने के लिए आई थी, लेकिन कृष्ण ने विष को नहीं देखा, दूध पिलाने वाले भाव को देखा और उसको मां के स्थान की धात्री गति दे दी। इससे ज्यादा दयालु और कौन होगा, और किसका शरण ले किम दयालु, कौन दयालु होगा। ये सुना सुखदेव ने कि सुंदर केवल नहीं है, स्वभाव भी बड़ा दयालु है। भागते हुए उनके पीछे आए, बोला ये कौन है। बोला पिताजी को, गुरुजी को पता है। और आके देखा, पिताजी के पास पहुंचा, तब लिखा है कि 18,000 श्लोक बैठ के सुने और पढ़े और अध्ययन किया। तो सुखदेव महाराज भागवत की कथाओं को स्वयं कहते हैं, ये स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, हरेर गुणाक्षिप मति ही भगवान बादरायणी अध्यगान महता ख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। कहता है इस कृष्ण की लीलाओं ने मेरे ब्रह्म आनंद से मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया और मैंने इसका अध्ययन किया, अब तो मैं वैष्णव को बहुत प्रिय हो गया हूं। पहले जो वैष्णव लोग हैं मुझे ज्ञानी समझते थे, लेकिन अब तो मैं कृष्ण की कथा से ऐसे रम गया हूं, ऐसा कथा में डूब गया हूं, रस के अंदर पड़ा हुआ हूं कि सारे वैष्णव को मैं प्रिय हो गया हूं। और इसके बाद अब आगे की कथा बोलते हैं। अब क्या प्रश्न रह गया, परीक्षित ने नवयुवक अवस्था में एक क्षत्र राजा होते हुए अपने राज का त्याग क्यों किया, उसको साप क्यों मिला। अब इस कथा के अंतर्गत तीन महाभागवत नारी उत्तरा परीक्षित की माता, द्रौपदी परीक्षित की दादी और कुंती उसकी दादी की भी सास, पांडवों की माता, इन तीन महान भागवत नारियों के गुणों का वर्णन है। जब जब किसी पीढ़ी के अंदर तीन माताएं भक्ति करती हैं, तीन पीढ़ियां भक्ति करती हैं, तब जाके कोई परीक्षित जैसा पुत्र पैदा होता है जिसके लिए भागवत का अवतार होता है। तीन मातृ कुल का वर्णन है, तीन पितृ कुल का वर्णन है। भीष्म पितामह का भगवान के सन्मुख 11 श्लोकों में प्रार्थना करते हुए भगवान का दर्शन खुली आंखों से करते हुए भगवत धाम जाने का वर्णन है। धृतराष्ट्र के भी उद्धार का वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज के राज और पांडवों की महिमा का वर्णन है। तीन तीन पीढ़ियां जब भक्ति करती हैं तब कोई भागवत पुरुष पैदा होता है। तो अब कथा बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने राज क्यों त्यागा। अब परीक्षित के जन्म से पहले कथा है, परीक्षितो अथ राज ऋषि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडु पुत्राणाम वक्ष कृष्ण कथो उदयम। कहता है वैसे तो हमारे को कोई मतलब नहीं है, कोई किसी आदमी की किसी राजा महाराजा की कथा करने से कोई हमारे को लेना देना नहीं है, लेकिन परीक्षित के जन्म से लेके जन्म कर्म, उनका जन्म की बात करेंगे तो कृष्ण की कथा होगी, उनके कर्म की बात करेंगे तो भी कृष्ण की कथा होगी। तो ये कृष्ण की कथा को ही प्रकट करने वाला प्रसंग है, इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है किसी की कथा का। तो फिर परीक्षित के जन्म की कथा की बात करते हैं। अब कथा ऐसे हो रही है, महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला, अंतिम सेनापति, पहला 10 दिन सेनापति रहा भीष्म पितामह, फिर 5 दिन द्रोणाचार्य, 10 और 5 15, 2 दिन करण रहा संभवतः 17, 18वें दिन शल्य मामा सेनापति बना। कितने सेनापति बदले? 4। पांडवों की सेना का एक ही सेनापति अंतिम तक रहा, दृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र। 18वें दिन के आधे युद्ध के समय पांडवों की ओर से केवल 3 वीर बचे। यदुवंश की सेना का सेनापति कृतवर्मा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और कृपाचार्य और दुर्योधन, ये बचा हुआ था। और दूसरे तरफ पांडवों की एक अक्षौणी सेना, पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी के केवल एक अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था। दृष्टद्युम्न भी जीवित था। दुर्योधन अपने योग शक्ति से एक पानी के तालाब में छुप गया, और जब तक राजा पराजित नहीं होता है तब तक युद्ध पूरा नहीं होता है। तो भीमसेन ने कुछ लोगों को भेजा पता करके, आओ, पता लगा कि इस तालाब में बैठा है। तो भीमसेन ने उसको ललकारा और वो बाहर निकला, और भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। उस गदा युद्ध में बार बार भीमसेन उसको मारे, लेकिन उसको कोई चोट न लगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जान के ऊपर मारो, यही कमजोर जगह है। दुर्योधन की माता गंधारी, कंधार जो काबिल, जो अफगानिस्तान है वहां की राजकुमारी थी, उसके पिता का नाम महाराज शुबल की पुत्री थी, और उसके भाई का नाम शकुनी था। भीष्म पितामह अपने भाई धृतराष्ट्र के लिए गंधारी का हाथ मांगने के लिए चले गए। भीष्म को ना करने का हिम्मत नहीं था महाराज सुबल में। गंधारी को पता लगा कि मेरे होने वाला पति आंखों से नहीं देखता है, तो गंधारी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, का पति नहीं देखता है तो मैं नहीं देखूंगी। इसलिए गंधारी को भागवत में कहा लिखा है सती पतिव्रता थी। लेकिन शकुनी ने कहा कि हमारे से जुलम हो रहा है, अंधे के साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, मैं इसके साथ जेज में जाऊंगा और भारत के अंदर जाके मैं बहुत बड़ा उपद्रव करूंगा। ये पहला शकुनी आतंकवादी आया था अफगानिस्तान से, अभी तक बहुत से आते रहते हैं, लेकिन पहला आतंकवादी ये था जिसने, ये भगवान के योजना थी, लेकिन सारे कौरों पांडवों को लड़ाने वाला शकुनी था। गंधारी ने एक दिन कहा कि युद्ध होने वाला है, मेरे पुत्र से मेरा मोह ज्यादा है, मैंने आज तक आंखों से पट्टी खोली नहीं है। दुर्योधन, कल तुम सुबह गंगा से नहा के आना, बस तुम्हारे सारे शरीर को मैं वज्र बना दूंगी, फिर तुम्हारा शरीर भीम की गदादी से भी टूटेगा नहीं। और दुर्योधन सचपच वस्त्र निर्वस्त्र होके नहा के मां के सामने जा रहा था। कृष्ण भगवान तो सब जानते थे कि द्रौपदी की पतिव्रता और सती है, और उसने दृष्टि डाल दी तो फिर ये मरने वाला नहीं। तो भगवान ने दुर्योधन के सामने कहा, अरे युवराज, नगर कहाँ जा रहे हो और भगवान कहाँ से आ गए? बोला, मैया ने कहा है। बोला, माँ है तो बच्चा थोड़ी है कि निर्वस्त्र जाएगा। भगवान ने माला दे दी। बोला, कम से कम तुम ये अपने अंगों को तो ढक दो। तो ये बेचारा ऐसे माला लटका के गया कमर में। मैया ने पट्टी एक बार खोली तो सारे अंग वज्र हो गए, लेकिन माला को देखकर, अरे बेटा, तेरी जांघें कमजोर रह गई। समझ गया कि कृष्ण ने मुझसे छल किया है। आज कृष्ण कह रहा है जांघ को मारो। भीमसेन ने घुमा के गदा जांघ को मारी, जांघ टूट गई। दुर्योधन नीचे धड़ाम से नीचे गिरा। बलराम जी आ गए। दो व्यक्ति युद्ध में भाग नहीं लिया था महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के युद्ध में, एक बलराम जी ने भाग नहीं लिया, बोला मेरा शिष्य है दुर्योधन, लेकिन मेरे भाई कृष्ण ने पहले पांडवों के संग में अर्जुन का सारथी बनने का वचन दे दिया, अब मैं कृष्ण के सामने तो लड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा करने चला जाता हूं। वो तीर्थ यात्रा करने चले गए। दूसरा इसी कौंडिन्यपुर का महाराज भीष्मक का बेटा, भीष्मक ना बड़ा बेटा शकुनी ना सॉरी रुक्मी, इसको महाभारत के युद्ध में न पांडवों ने लिया न कौरवों ने लिया, ये ऐसे ही रह गया। इसके अहंकार के कारण दोनों ने युद्ध में नहीं लिया। बलराम जी घूमते हुए आए और इस युद्ध को देखा, भीमसेन के ऊपर गदा लेके खड़े हो गए कि तुमने गलत जगह पे मारा है, गदा युद्ध में कभी भी जांग के ऊपर नहीं मारना है, तुमने जांग के ऊपर क्यों मारा, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अब भीमसेन कहता है मैं बलराम से कैसे युद्ध करूं, कृष्ण खड़े हो गए, बोला भैया दाऊ जी रुको तो सही, दाऊ जी कहते तुम नहीं, तुम पक्षपात करते हो पांडवों का, मेरे शिष्य को तुमने अधर्म से मरवा दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जुआ के अंदर शकुनी ने पांडवों को 12 साल वनवास दिया का वो धर्म था क्या, द्रौपदी को निर्वस्त्र सभा में किया जा रहा था ये धर्म था, अरे छह महारथियों ने हमारे प्रिय भांजे अभिमन्यु को मार दिया क्या ये धर्म था। अब तो बलराम जी कहते अभिमन्यु नहीं है, बोला अभिमन्यु को इसने और 5 महारथियों ने बिना अस्त्र शस्त्र के घेर के मारा था, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। अब बलराम कहता है फिर मरने दो इसको। भगवान ने भीमसेन की रक्षा कर ली, बलराम जी यहां से चल गए, चल दिए, पांडव अपने शिविर में आ गए। ये तीनों कृतवर्मा, अश्वस्थामा और कृपाचार्य आधे मरे हुए दुर्योधन के पास आए। अश्वस्थामा कह रहा था महाराज मुझे आप सेनापति बनाओ और बनाया होता तो मैं मेरे पिता का प्रतिशोध बदला लेता, मैं पांडवों का सर काट के आपको ला के दूंगा। दुर्योधन ने अपनी जांग से निकले हुए खून से अश्वस्थामा को तिलक लगाया कि तुम सेनापति हो, एक क्षत्रिय का खून ब्राह्मण के माथे के ऊपर लगा। ये तीनों एक पेड़ के नीचे जाके रात को बैठे, पेड़ के अंदर लाखों पक्षी बैठे थे आराम से सो रहे थे, एक उल्लू आया और उल्लू ने पक्षियों को मार गिराया और इस अश्वस्थामा ने उल्लू से शिक्षा ली क्योंकि क्षत्रिय का खून सर के ऊपर चढ़ा हुआ था। रात को सोए हुए पांडवों के शिविर में जाके सोए हुए को मारना पड़ेगा। दोनों को कहा चलो हमारे साथ, बोला आपके साथ कहां चलें क्यों चलें, बोला रात को युद्ध करेंगे, पांडवों की एक अक्षौणी सेना शिविर में सोई हुई है उनका वध करेंगे। दोनों ने कहा सोए हुए को मारना धर्म युद्ध नहीं है, बोला कौन सा धर्म युद्ध रह गया बाकी, मैं जाऊंगा अंदर मारने, आप अंदर मत जाना, बाहर खड़े रहना, जो जागते हुए भागे उसको मारना। अश्वस्थामा ने उल्लू से शिक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण वो तो त्रिकाल दृष्टि सब कुछ जानने वाले हैं, पांडवों को कहा 5 भाई और 6ठा सात्यकी अर्जुन का शिष्य और यदुवंशी, देखो जब विजय हो जाए तो राजा को अपने शिविर में नहीं सोना चाहिए, कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। भगवान उनको समन पंचक के पास और जाके सुला दिया कहीं, वहां सोए हुए नहीं थे 5 पांडव और कृष्ण और सात्यकी नहीं था, ये 7 आदमी वहां नहीं थे। और अपने शिविर के बाहर शंकर जी को बाहर खड़ा करके गए कि शिविर की रक्षा करना। अश्वस्थामा गया तो शंकर जी को सामने देखा, अश्वस्थामा शंकर का अंश है। अश्वस्थामा ने कहा मुझे अंदर जाने दो, बोला नहीं मेरे को भगवान रक्षा के लिए छोड़ गए हैं, बोला नहीं मैंने प्रतिज्ञा की है मैं सेनापति हूं। शंकर समझ गए कि भगवान की इच्छा है, तब ये आया है। शंकर हट गए, अश्वस्थामा ने अंदर जाके पहले दृष्टद्युम्न को जिसने इसके पिता का गर्दन उठाया था उसको बालों से घसीटा और रोंग रिंग रिंग के मार मार चिल्ला चिल्ला के मारा। फिर सबके ऊपर बाण चलाया, बाहर भागने वालों को तो बाहर खड़े हुए कृतवर्मा ने और कृपाचार्य ने मारा, और द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे उनका गर्दन काटा अश्वत्थामा ने, 5 का गर्दन उठाया और तीनों को लेकर तीनों वापस दुर्योधन के पास आए, कहा महाराज ये पांडवों के सर आप लीजिए। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया कि मरने से पहले शत्रु के सर को काट के लाया है, लाओ तो सही देखूं पांडवों का सर है, मेरी गदा से जिनका सर नहीं चूर्ण हुआ तुमने कैसे काटा। दुर्योधन ने ऐसे खोपड़ी को दबाया, खोपड़ी पिचक गई, बोला ये पांडवों का सर नहीं हो सकता। अश्वत्थामा कहता है हां ये द्रौपदी के 5 पुत्र पांडवों का सर है। बोला ये तो आपने बच्चों की हत्या की, मेरा नाम का बदनाम कर दिया मेरे नाम को, और दुर्योधन को ये शराब था, जब तुम्हारे को बहुत खुशी होगी और फिर शोक होगा तब तुम्हारे प्राण निकलेंगे, पहले तो पांडवों के मृत्यु का समाचार का प्रसन्नता हुई और फिर शोक हुआ और यहां दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। सुबह द्रौपदी आके देखती है तो भाई मरा हुआ है, सेना मरी हुई है, 5 पुत्र है, गर्दन नहीं है, 5 पुत्र मरे हुए हैं। द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी, अरे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ होते तो हमारे को छाती पे बाण खाया होता तो माता खुश होती, लेकिन रात को सोए हुए की अधोगति करके कौन मार के गया है। तब तक कृष्ण 5 पांडवों को लेकर वहां आए, अर्जुन ने द्रौपदी को विलाप करते हुए देखा, द्रौपदी को आश्वासन दिया कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का सर काटा है उसका सर काट के लाऊंगा, उसके सर के ऊपर खड़ी होके तुम अपने पुत्रों को तर्पण करना। अर्जुन ये कहा और कृष्ण को कहा अब तुम मेरा सारथी बनो, रथ को ले चलो, किसने इनका सर काटा है। अश्वत्थामा ने बालकों की हत्या की तो उनके अंदर में शक्ति समाप्त हो गई, बाल हत्या करना सोए हुए को मारने से उसका भयभीत होकर रथ के ऊपर चढ़ के भागा। आगे अश्वत्थामा का रथ भाग रहा है, पीछे कृष्ण अर्जुन के रथ को ले जा रहे हैं बहुत तीव्र गति से जाते हुए। अश्वत्थामा के घोड़े थक गए और जैसे घोड़े थक गए अश्वत्थामा के, रथ को छोड़ के दौड़ के भागने लगा। तब तक अर्जुन ने जाके दबोचने के पहुंचा तो मरता क्या नहीं करता। अश्वत्थामा ने जल लिया, ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अर्जुन की तरफ रवाना कर दिया। अर्जुन ने आंख के गोले को अपनी ओर आते हुए देखा, कृष्ण को कहा हे महायोगी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, आप आदि पुरुष हो, आप परमात्मा हो, ये कौन सा गोला मेरी तरफ आ रहा है, मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को प्रार्थना भी करनी हो, कोई काम भी हो तो पहले उनकी गुणगान करना चाहिए। अर्जुन ने 3 श्लोकों में भगवान की पहली प्रार्थना की है और फिर भगवान ने कहा यह ब्रह्मास्त्र है, अब आप अपने ब्रह्मास्त्र को यहां से रवाना करो और इस दोनों ब्रह्मास्त्र को एक दूसरे को समाप्त करो। अर्जुन ने आवाहन किया ब्रह्मास्त्र का, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और बहुत आग लगने लगी, चारों ओर भयंकर विनाशकालीन आग लगी तो आकाश में ब्रह्मा जी ने कहा आकर प्रलय हो जाएगी, ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अश्वत्थामा कहता है मुझे वापस लेना नहीं आता, अरे तो चलाया क्यों। कृष्ण का अर्जुन दोनों अस्त्रों को वापस ले लो, अर्जुन ने दोनों अस्त्रों का समाहित कर लिया, वापस ले लिया और फिर अश्वत्थामा को अर्जुन ने दबोच लिया, पकड़ लिया। अब कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, बोला पकड़ के कहां ले जाओगे इसको, रथ के इसका गर्दन काटो, तुमने वचन दिया था द्रौपदी को इसका गर्दन काट के लाओगे तो काटो इसका गर्दन। अर्जुन क्षत्रिय है, अपने पुत्रों के दुख से पीड़ित है लेकिन अधर्म का काम करना नहीं चाहता है, समझ गया कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं। बोला हे केशव कृष्ण, जो महाराज युधिष्ठर और द्रौपदी इसको दंड देंगे वहां ले चलते हैं, मैं इसका गर्दन नहीं काटूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए, कि अपने दुख में अधर्म तो नहीं करने जा रहा है मेरा मित्र, वापस इस बंधे हुए को लाए हैं। अब द्रौपदी की मानता का श्रवण करें। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा, कहती है ब्राह्मण को क्यों बांध कर लाए, अपने गुरु के पुत्र को बांध कर लाए हो, जिस गुरु की शिक्षा से तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए उसके पुत्र आज उसके रूप में यहां खड़ा है। इसके पिता तो वीर गति को प्राप्त हो गया, मेरे पांच पति आप जीवित हो, मेरे को पुत्र हत्या की पीड़ा का पता है, इसकी मां को इसके मृत्यु का पता लगेगा तो कृपी जो रोएगी वो मैं उसको दुखी नहीं देखना चाहती हूं। मैंने मेरे बेटों के दुख देखा है मृत्यु का, मैं किसी और मां को ऐसे अपने पुत्र के ऊपर रोता हुआ देखना नहीं चाहती। तुम पांच पति मेरे जीवित हो, इसकी माता का पति आपका गुरु पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है, और क्षत्रिय अगर इस तरीके से अधर्म करेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा, इसको खोल दो, इसको खोल दो। छह कारण बताए हैं द्रौपदी ने कि अश्वत्थामा को मत मारो, खोल दो, जाने दो। धर्मराज युधिष्ठिर कहता है जो कह रही है पांचाली सही कह रही है, इसको खोल दो। भीमसेन कह रहा है स्त्री है, भावुक है, इसको क्या पता कि ये दुष्ट कितना मान है, इसको मार दो। अब अर्जुन बेचारा द्विधा में पड़ गया, कृष्ण की ओर देखा कि क्या करूं। कृष्ण ने कहा मैंने शास्त्र में ये नियम दिया है कि ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो आतिताई हो, दूसरे के घर को आग लगाए, दूसरे की पत्नी का अपहरण करे, दूसरे के धन को लूटे, ऐसे जो आतिताई है उसका वध कर देना चाहिए। अब आप द्रौपदी को प्रसन्न करो, भीमसेन को नाराज मत करो, मेरी इच्छा पूर्ण करो, युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा का पालन करो। अर्जुन बुद्धिमानी से समझ गया कि ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण का धन छीनना, ब्राह्मण का अपमान करना मौत से ज्यादा है। एक मणि थी अश्वत्थामा के माथे के ऊपर लगी हुई, अर्जुन ने उसको काट के निकाल दिया और उसको धक्के दे के आधे बाल काटकर शिविर से बाहर निकाल दिया, अपमानित करके। ये मणि अश्वत्थामा की टूटी, अभी तक ये घाव पड़ा है। ब्रज में एक क्षेत्र है वहां कोई नहीं जाता है, कोई लकड़ी नहीं उठाता है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी वहां घूमता रहता है। अश्वत्थामा अभी तक जीवित है, चिरकाल में जो ज्यादा जीवन कर जीवन वाले उनमें से एक अश्वत्थामा है। आने वाले मंत्र मनवंतर में अश्वत्थामा सप्त ऋषियों में एक ऋषि बनेगा। अब द्रौपदी के ये भाषण को सुनकर अश्वत्थामा यहां से चला गया। जाते जाते उसने कहा मैं पांडवहीन पृथ्वी को कर दूंगा, कोई पांडवों का अंश भी नहीं बचेगा। अब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण माताओं से विद्या लेकर विदा लेकर द्रौपदी को प्रणाम किया, अपनी बहन सुभद्रा से मिले, द्रौपदी से मिले, कहा कि अब मैं वापस द्वारका जाता हूं। भगवान द्वारका जाने के लिए रथ के ऊपर चढ़े, अर्जुन रथ को संभाल के बैठने, चार पांचों पांडव साथ में खड़े हैं, सात्यकी की चौर जुड़ा रहा है और भगवान जाने के लिए विदा होने को तैयार खड़े हैं। अश्वत्थामा ने छह ब्रह्मास्त्र एक समय में चलाए, पांच पांडवों को मारने के लिए और एक उत्तरा के उदर में अंतिम पांडवों के अंकुर अभिमन्यु के अंश भविष्य में होने वाले परीक्षित का प्रलयकालीन अस्त्र चलाया के समाप्त हो जाए। कृष्ण अभी तक रथ के ऊपर बैठे हैं, रथ चलने वाला है, विदाई का समय है, और विधवा उतरा सफेद साड़ी में, महलों से बाहर निकली, सब आश्चर्यचकित हो गया, विदाई के सामने विधवा क्यों आ रही। लेकिन उतरा कहा, योग महायोगिन कृष्ण, कृष्ण महायोगिन पाई माम, मेरी रक्षा करो। पता नहीं क्या गोला आग का मेरे उदर में आपके अंश, पांडवों के वंश, भक्ति के अंतिम अंकुर का विनाश करने जा रहा है। तो हो सकता है लोग कहेंगे कि ये विधवा मरने से डर रही है, इसलिए प्रार्थना कर रही है। तो उत्तरा कहती है, मैं तो अपने पति के साथ विधवा हो सती हो जाती, मैं तो अभिमन्यु के साथ सती होने को तैयार थी, लेकिन उस वक्त आपकी भक्ति का अंकुर, पांडवों के वंश का अंश मेरे उदर में था, और आज अगर मुझे मरना है तो मरने दो, लेकिन मेरे अंश भक्ति के वंश और आपके भक्त की रक्षा करो। भगवान समझ गए कि अश्वस्थामा का ये ब्रह्म अस्त्र है। पांडवों ने भगवान को प्रार्थना नहीं की, भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि ये पांडव मेरे को प्रार्थना नहीं करेंगे, इसको पता नहीं है, और इनको ब्रह्म अस्त्र का निवारण करना भी नहीं आता है। आज भगवान ने लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की, मैं मर्यादा में हूं कि मर्यादाहीन हूं इसकी परवाह नहीं की। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और पांडवों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को खड़ा कर दिया। पांचों ब्रह्म अस्त्र सुदर्शन चक्र को छूकर नीचे बैठ गए। कहते भगवान ने वचन किया था अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह के सामने तो रथ के पहिए को उठाया था, रथांग पाणी बने थे, लेकिन आज तो साक्षात सुदर्शन चक्र उठा लिया। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भक्तों का रक्षक हूं, चाहे मुझे कोई कहे कि नेम तोड़ दिया तो मैं अपना नेम तोड़ देता हूं, लेकिन भक्तों की रक्षा करने में कभी मैं चूकता नहीं हूं। और दूसरे तरफ भगवान उत्तरा के हृदय से नीचे उतर के उसके गर्भ में चले गए, और गर्भ में जाके उत्तरा के भगवान ने अधीर होके सुदर्शन चक्र की तरह गदा को चलाया और परीक्षित की रक्षा हो गई। तो ऐसे उत्तरा की प्रार्थना से परीक्षक की रक्षा हुई, द्रौपदी की महान चरित्र का श्रवण हुआ। इसके बाद पांडव अपने जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, रिश्तेदार पुत्र बांधु बांधव आगे स्त्रियों को करके गंगा के ऊपर तर्पण करने के लिए गए। सब रो रहे थे, अपने अपने पुत्रों का नाम लेकर, अपने अपने पतियों का नाम लेकर, अपने अपने भाइयों का नाम लेकर। व्यास देव ने सबको वहां जीवित करके भी दिखाया। वहां कुंती महारानी युधिष्ठर महाराज के पास चली गई, जो पानी घुटने भर पानी में अपने पुत्रों को अंजलि दे रहा था। कुंती ने कहा, बेटा एक अंजलि जल की कर्ण को दे दो। बोला, हमारा क्या कर्ण से, वो तो हमारा शत्रु था। बोला, बेटा नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई था। मेरे विवाह से पहले सूर्य देव से कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। मैंने बहुत कहा कि पांडवों का संग दो, उन्होंने वचन दिया तो तुम्हारे पांच पुत्र रहेंगे, बस या अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, तो अब कर्ण को भी आप जलांजलि दे दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, माता पहले आपने बताया होता तो ये इतना बड़ा भारी युद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर अनर्थ हो जाता, तुम राज देते कर्ण को, कर्ण तो इतना कर्जदार था, ऋणी था दुर्योधन का, राज दुर्योधन को दे देता फिर मेरा धर्म स्थापन नहीं हो सकता था। कुंती ने रहस्य रखा, ये अच्छा है। आज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, माताओं मैं शराप देता हूं कि कोई चीज छुपा के दिल में मही रख सकोगी, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, तुमने पहले बताया होता था मेरा भाई है तो ये लड़ाई नहीं होती। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो कुंती महारानी आगे आ गई और कहा कि इतना बड़ा अपशुकन हो गया, हमारे पुत्रों के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई थी, आपने रक्षा की है। तब तक युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अब मत जाइए, अब आप रुक जाइए, अब आपके जाने का समय आएगा तब आप जाइए, कुछ समय और हमारे साथ रुक जाइए। और ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती महारानी की प्रार्थना, अब कुंती महारानी यह प्रार्थना कर रही है, अब कुंती महारानी की प्रार्थना का आठवां अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। कुंती महारानी कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र कहा भगवान रथ से नीचे उतर के आ गए माँ के पास। कुंती महारानी ने कहा भगवान मैं स्त्री आपको कैसे जान सकती हूँ, बड़े बड़े ऋषि अमल आत्मा ये परमहंस आपको जान नहीं सकते, आप तो भक्ति भक्ति मार्ग का मार्गदर्शन कराने के लिए प्रकट हुए हो, आपने हम पांडवों के ऊपर कितनी आपदा आई, हमारे बेटे भीम को विष दिया गया आपने रक्षा की, लाक्षागृह में हमको जलाना चाह आपने रक्षा की, मेरी पुत्र वधु का सभा में अपमान हो रहा था आपने बचाया, अरे अभी इस महाघोर युद्ध में मेरे पांचों पुत्र सुरक्षित हैं। श्री कृष्ण, कोई कहता है कि आप यदुवंशियों की कीर्ति बढ़ाने के लिए अवतार लेकर आए, कोई कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर आए, कोई कहते हैं असुर के संहार के लिए अवतार लेकर आए, लेकिन मैं समझती हूँ कि भक्तों के रक्षण के लिए आप आए हैं। और फिर माता ने एक ऐसी प्रार्थना की जो आज तक किसी ने भगवान को प्रार्थना नहीं की है, वो सब दुख जो मेरे को आए थे कृष्ण बार बार आए, अरे मैया दुख भोगते भोगते क्या तुम्हारी बुद्धि दुख वाली हो गई है, तुम दुख क्यों मांग रही हो मैया, भूल गई क्या? बोला नहीं, विपत्ति संतु, वो विपत्तियां सारी आए दुख आए। बोला क्यों मैया, हे भुआ ये क्यों मांग रही हो? बोला जब विपत्ति आती थी हम आपको याद करते थे, आप आ जाते थे, आज हमको राज की संपत्ति मिली है और आप जा रहे हैं, ऐसे सुख को क्या करें जिसमें आपसे जुदाई हो रही है, वो दुख अच्छा है जिसमें आप आते हैं, और आप आते हैं तो फिर जन्म मृत्यु कहाँ रह जाता है, इसलिए दुख जो है वो दारू है दवाई है, और सुख जो है वो रोग है, सुख भोग में फंसा देता है, दुख भगवान की याद दिला देता है। दुख दारू सुख रोग भया, इसलिए कहते हैं दुख में सुमरण सबको करे, सुख में करे न कोई, सुख में भगवान याद नहीं आता है, दुख में याद आता है, और ये सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो, अगर सुखी हो तब भगवान का नाम ले तो फिर दुख आएगा क्यों। सो कुंती महारानी प्रार्थना अद्भुत प्रार्थना में कहती है भगवान श्री कृष्ण मेरा मोह इस संसार से खत्म हो जाए, ये पांडवों से मोह यादवों से मोह मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं भी यदुवंशी हूं, क्या तुम मुझसे भी कोई प्रिय रास्ता नाता तोड़ना चाहती हो क्या? कहती है नहीं नहीं, मेरी तो बुद्धि आप में ऐसे सदा निरंतर बहती रहे जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से उतर के यमुना में बिना रुकावट के जाती है, ऐसी मेरी धारणा मेरी बुद्धि सदा आपका सुमरण करती रहे। कुंती महारानी की ऐसी अद्भुत प्रार्थना सुनकर, अरे कुंती महारानी कहती है श्री कृष्ण मैंने आपको गोकुल के अंदर यशोदा मैया से भयभीत देखा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, जिससे भय भयभीत होता है, काल जिसके अधीन होता है वो एक मैया की छड़ी देख के डर रहे थे, तुम नाटक कैसे करते हो जैसे कोई अभिनेता हो, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप साक्षात भगवान हमारे बच्चों की रक्षा की है, हम आपके शरण में हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और कुछ दिन रह गए। युधिष्ठिर महाराज को कहो कि राज करो, बोला मैं राज नहीं करूंगा, मेरे कारण कितनी पत्नियों का पति चला गया, कितनी बहनों का भाई चला गया, कितनी माताओं के पुत्र चले गए। धौम्य ऋषि उनके गुरु ने समझाया कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, बोला मैं राजा थोड़ी था, राजा तो दुर्योधन था, राजा को युद्ध करना चाहिए। मैंने कृपाचार्य ने समझाया, व्यास देव ने समझाया, श्री कृष्ण ने समझाया, युधिष्ठिर किसी की नहीं मान रहा था। बोला कृष्ण ने अंदर बैठे हुए परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर को कहा कि किसी की मत मानो। बोला ऐसे क्यों कहा? कि भगवान श्री कृष्ण की कुछ इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि युधिष्ठिर को शिक्षा भीष्म पितामह से दिलानी, मेरा मान भक्त भीष्म पिता है, वो दुर्योधन को शिक्षा देगा, तब मैं दुर्योधन को और सारी युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा भीष्म पितामह से दिलानी है। एक दिन दुर्योधन, रात को युधिष्ठिर महाराज को नींद नहीं आ रही थी, चले गए श्री कृष्ण के कक्ष में, कमरे में। श्री कृष्ण भी ऐसे ध्यान में बैठे हैं। युधिष्ठिर को आश्चर्य लगा कि महाराज आप किसका ध्यान कर रहे हैं भैया। श्री कृष्ण कहते हैं इस वक्त मेरा परम भक्त भीष्म पितामह उत्तरायण आ गई है, ये कल नहीं परसों 14 तारीख को उत्तरायण गई है, इसको उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण आ गई है, मेरा प्रिय भक्त भीष्म मेरा सुमरण कर रहा है, तुम चलो कल सब तैयार होके उसको दर्शन देंगे और फिर मैं वापस द्वारका चला जाऊंगा। तो भगवान ने कहते, भगवान को जो याद करता है भगवान उसको याद करते हैं। भीष्म पितामह भगवान को याद कर रहे थे और भगवान भीष्म पितामह को याद कर रहे थे। अब दूसरे दिन पांडव बड़े बड़े सुंदर रथों पे चढ़े हैं, श्री कृष्ण का सारथी अर्जुन बना है और ये सब पांडव कुरुक्षेत्र में जहाँ भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर सोए हुए हैं वहाँ जा रहे हैं। यह कथा को आज विराम देते हैं, कल भीष्म की स्तुति के बहुत सुंदर श्लोक है उसका श्रवण करेंगे, उसके बाद पहले स्कंद और दूसरे तीसरे स्कंद को कल पूरा करेंगे। हमें भागा दौड़ी नहीं करनी है। आपको कथा समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कथा वो जो समझ में आए। मैं भागा दौड़ी करके स्कंद के ऊपर स्कंद पूरा करूं और आपको पले कुछ नहीं पड़े तो कोई लाभ नहीं। तो कल हम भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख कैसे सुंदर स्तुति करते हैं इसका श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहाँ विराम देते हैं, बाकी 5 मिनट बचे हैं, आरती और कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा